Pensado. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. कल के सबक में से कुछ कमेंट्स, और इसको सुनते वक्त आप सब भी सुना करें, सोचा करें कि किसी एक के जहन में अगर ये ख्याल आया इन चीजों को सुनकर, तो मेरे जहन में क्यों नहीं आया. आप अपने इर्द गिर्द वालों से भी सीखिए, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा टीचर हों और आप उनसे फायदा उठा सकें. ये लिखते हैं कि आज के सबक से यही जाना है कि अपनी जिंदगी में बहुत ही असूल का मुहासबा करना है. हम अपने बड़ों की बनाई हुई रसूमात पर गौर करके सोचें और इनसे बचें. मेरा पेपर बहुत कटा हुआ है, मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, मैंने फीस नहीं दी थी, शायद इसलिए मेरे नाम का पेपर ना था. मैं बहुत घबरा गई, अब मैं परेशान हूँ, मैं अब भी कांप रही हूँ. आप सुनिए, ये सारी बातें यहाँ लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी आपको. बहरहाल, आज के सबक से मुझे बहुत डर लगा. अल्लाह ताला हमारे अपनों को और हमें बुराइयों से, शिर्क से दूर कर दे. अल्लाह ताला हमको अपनी दी हुई किताब को समझने की तौफीक दे. आज मैं ये सब कुछ देखकर कांप गई और ठंडी पड़ गई, और इस गिरोह और अनपढ़ लोगों से, ऐ अल्लाह हमें इस गिरोह और अनपढ़ लोगों से दूर कर दे. इस दुआ में एक दुआ और भी शामिल कर लें कि अल्लाह ताला हमें इनकी ये जहालत दूर करने का जरिया बना लें. असल तो ये तड़प है. हम ये चीजें क्यों देखते हैं? ताकि हमारा खून गर्म हो, हमें गुस्सा आए और हम देखें इसके बारे में कि किस तरह से हम अपने आप को इन चीजों के साथ, कुछ इन लोगों बेचारों के भी अंधेरे दूर कर दें, वरना तो बेचारे पता नहीं किस मौत मर जाएंगे जहालत की. आज टेस्ट देकर आखिरत के टेस्ट की फिक्र में रहले, इसमें कुछ टेस्ट वाले भी मिल गए. आप इशरत प्लीज फौरन उठा लिया करें, जो मिक्स हो जाते हैं ना बीच में, फिर वो टाइम वेस्ट होता है. आज खलूस नियत से अपने अमलों का इहाता करना है. उम्मी, अनपढ़ और जाहिल बनने से बचना है. कुरान और हदीस के इल्म को जिंदगी का असूल बनाना है. अगर जिंदगी ने साथ दिया, काश के मैंने ये कोर्स आज से 10 साल पहले किया होता, लेकिन इंशाल्लाह देर आए दुरुस्त आए, सिर्फ अल्लाह सुबहान तआला की मदद की तलबगार हूँ. देखिए, ये दुआ करें कि ये कोर्स हम पूरा कर लें. जब अल्लाह ने मौका दिया, शुक्र करें. और वाकई 10 साल के आगे जाएंगे तो आप रोएंगे कि काश हमारे माँ बाप ने हमें दूसरे स्कूल में डालने की बजाय इस स्कूल में क्यों नहीं डाल दिया, जहाँ से हम वो तड़प लेते जो जिंदगी गुजारने का तरीका है. और यकीन करें, हम में से बहुत सारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनको गुजारना नहीं आता, मकसद का पता ही नहीं है, और उसके बगैर हम दुनिया में आए हैं और बस खा पी के चले जाते हैं. अल्लाह ताला से दुआ है कि किताब से जोड़ दे. कल फेसबुक पर एक अजीब चीज देखी कि एक आदमी जो अपने आप को लासानी बाबा कहता है, वो मुर्गी को मारकर दोबारा जिंदा कर लेता है. अस्तग़फिरुल्लाह. अल्लाह ताला हमें इन तमाम शिरकों से बचाए. ये इसी वक्त मुमकिन है जब हम किताबुल्ला हदीस शरीफ को पढ़े और जानेंगे. अल्लाह ताला आपको जजा दे. शुक्र गुजार हूँ कि आप यहाँ आज यहाँ बैठी हो. देखिये, ये जिनका इन्होंने नाम लिया मेरी स्क्रीन पे, कल भी इनका क्लिप मौजूद था, लेकिन वो मैंने सोचा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है. वो वहां आएंगी आयते जहां दिखाऊंगी कि अल्लाह ताला तो कहता है कि युहयी व युमीत, अल्लाह जिंदा करता है और मारता है. और हकीकत में आज बड़ा मारूफ शिरक हो रहा है कि मुर्गे को जिंदा करते हैं, मुर्दे को मारते हैं, और लोग उसी पे पहुंच रहे हैं. लेकिन आप देखिए कि ये काम सारा तो हिंदुओं के भी बाबा करते हैं, तो फिर उनको भी मानेंगे आप? ये सिर्फ शोबदाबाजी और कुछ भी नहीं है. अपने आप को 100% सराउंड करना है अल्लाह ताला के लिए. अल्लाह उस्ताजा जी, मैंने ये भी फैसला कुरान की किताब में बैठकर किया है, और आप सब बहनें मेरे इस फैसले पर मेरे हक में दुआ करें. आप कर दें दुआ इन सब के लिए. पहले जन्नत का लफ्ज सुनकर ऐसा लगता था कि हम सीधे जन्नत में जाएंगे, लेकिन आज पढ़कर ऐसा लगा है कि हम कहाँ और हमारी औकात कहाँ. अल्लाह हमें अमल वाला बना दे. अच्छा कमेंट है, लेकिन नामीदी नहीं, बस अब यह है कि ट्रैक चेंज हो गया. पहले हम सोचते थे जन्नत का रास्ता बिल्कुल सीधा, अब पता चला ये बड़ा क्रुकेड है, इधर से उधर घूमने वाला रास्ता है. अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे. आज का सबक पढ़कर अपने ईमान की फिक्र लग गई है. इससे पहले अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों का इहाता करे, हमें खुद इनको देखना है और इन बुराइयों से बचना है. ये तो सच है. कुरान पढ़ने से पहले बंदा खुद बहुत कुछ पता है, फिर पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं. आज का सबक माशाल्लाह बहुत अच्छा था. हर रोज एक नई बात पता चलती है. आज आपने जो उम्मी वाली बातें बताई हैं, वो बातें हमारे अंदर बहुत ज्यादा हैं. हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन सी बुराई कर रहे हैं. हमारे अंदर एक बुराई नहीं बल्कि कितनी ही बुराइयां हैं. आपने बताया कि हमें इससे कैसे छुटकारा पाना है. हम इस अल्लाह के कलाम से जुड़ेंगे. अपने अंदर दीन का दर्द लेकर आना है. अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो हम सबको दीन की सही समझ दे. आमीन. अल्लाह हमें इस छोटी सी गलती से बचा जो हमारी नेकियों पर भारी हो. ये इन्होंने किस पे बोला है? अहातत भी खतियतु। कल यकीन करे सारा दिन मेरा अपना भी जहन इसी पे था, बल्कि कल पढ़ाने आ रही थी तो भी ये था। हर दिन के सबक में से एक पिन पॉइंट मेरे भी जहन में होता है। तो ये जो बात है ना कि बहुत सारे गुनाहों की जरूरत नहीं है आपको मुझे जहन्नुम में जाने के लिए, एक गुना काफी है। हतिया, खतायात नहीं कहीं। तो आज हम कैसे एक छोटे से गुना को छोटा समझ के छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। अल्लाह हमें छोटी सी गलती से बचा जो हमारी नेकियों पर भारी हो। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करती हूँ इस जात का जिसने मुझे आज इस जगह पे ला बिठाया और तौफीक दी। आज के सिर्फ दर्स में ही नहीं बल्कि इम्तिहान में भी शरीक हुई, जबकि आज मेरा पहला दिन है। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करती हूँ कि मेरा आखिरी दिन तक आना आसान हो। आप भी दुआ करें। देखिए कल एक सिस्टर आई और उन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी कल फर्स्ट टाइम आई, परसों एक दर्स में मुझे भी मिली, वहां और भी साथी थे, हमने उनको दावत दी कि आप आइए। कल वो आ गई, कल आते ही देखिए मुझे तो वो याद आ रहा है कि मूसा के जादूगर, कि सुबह तक क्या था उनका हाल, लेकिन शाम को शहीद भी हो गए। अल्लाह नेकियों के मौके दे। कल उन्होंने टेस्ट भी दे दिया, हालांकि लिसेंस नहीं देते। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी फॉर रजिस्ट्रेशन करती हूँ। अब उस टेस्ट में क्या लिखा है नहीं लिखा, हु केयर्स, बस अल्लाह ने उनका नाम लिख लिया। तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें महरूम ना करे। आज के सबक से इल्म की अहमियत और वाजे हुई, और हमें इल्म से जोड़ना है, कुरान को पढ़ना है और गुनाहों से बचना है, अमल सालेह के साथ ऊपर चल अमल सालेह पे चलना है, शिर्क से बचना है, और अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हर रोज एक ही बात लिख देती हूँ कि आज बहुत डर लग रहा है, मगर हकीकत यह है कि हर रोज दिलो दिमाग में अल्लाह का डर होता ही है, मगर आज तो जिस्म भी कांप गया। और दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमें और हमारी औलादों को मुशरिक और इन अनपढ़ ग्रोहों में ना डालना, जो कुछ हम सीख रहे हैं इस पर अमल करने की तौफीक देना, अपने और अपने घर वालों और साथियों को साथ लेकर चलना। काम पे तो आप भी होंगे ना वीडियोस देखकर, और मैं सोचती रही कि ये भी तो इंसान ही है ना, इनकी माँ ने भी तो इनको 9 महीने पेट में रखा ही है ना, क्या इनका नसीब ये है कि ये आग में जले, और इनको पता भी नहीं है कैसे अपने ही जैसे इंसान जो अपने हाल से भी बेहाल हुए मैं उनके आगे घूमते हैं। एक ऐसा क्लिप मैंने अपनी एक और क्लास में दिखाया था, अनबिलीवेबल, यानी जब जब मैं लफ्ज उम्मी बोलती हूँ ना तो मेरे जहन में आता है कोई दरगाह है सिंध की, बड़ी मारूफ है, लाल शहबाज के अंदर उस वो है या उसका कोई साथ का होगा, पूरी क्लिप है उसका, जब मौका मिला कभी आपके नसीब में हुआ तो दिखाएंगे कि वहां लोगों का गुमान क्या है कि वहां एक नहर है, नहर से मुराद है कि पानी है एक कीचड़ वाला, उनका ख्याल है कि ये बाबा जी का फैज है। मैं जो बातें अपने लफ्जों में बता रही हूँ आप खुद भी जाके सुन सकते हैं, इससे ज्यादा ही सख्त लफ्ज होंगे, मैं तो उसको नरम करना चाहती हूँ। तो लोग वहां सारा दिन रहते हैं, फिर बारियां लगती हैं, फिर वो कीचड़ वाला पानी उठा के ना यहाँ जैसे गंदे घी के डब्बे और क्या मैं कहूँ, और उसमें डाल डाल के औरतें मर्द अपने ऊपर डाल के पूरे कीचड़ के बन जाते हैं, नहाते हैं वहां जाके। उनका ख्याल है कि इस पानी की बरकत से, इस कीचड़ वाला पानी, इसमें बाबा जी का फैज है। क्या ये आप पढ़े लिखों वाली बात करते हैं कि अनपढ़ों वाली करते हैं? और हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे पास काम करने के लिए वक्त ही नहीं, हमें बहुत मसरूफियत है, दीन के नाम पे भी सिर्फ रिचुअल। आज पता चलेगा हमें कि जो आज का मुसलमान है इसका बड़ा मसला क्या है। बहरहाल आज के सबक ने दिल में कुछ छुपी बातों को खोल दिया, आज दुनिया का सच दिखाया हम कितने गुमराह हैं। अल्लाह से तौफीक मांगनी है, मैंने जन्नत पानी है मगर अमल के साथ इंशाअल्लाह ताला। इन आयतों को पढ़कर बहुत डर लगा कि नेकियों के करने के बावजूद एक गुना पर पकड़ हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें वो गुना अपने अंदर महसूस करवा कर इसको दूर करने की तौफीक दे और तौबा करे। आपने बात में जाके सोचा कोई एक गुना ऐसा होता है हर बंदे का कि जो उसको रातों को सोने नहीं देता, और ये अलग बात है कि जमीर को मार दें तो फिर उसमें भी नींद आ जाती है। तो अभी से सफाई शुरू कर दें इससे पहले कि बहुत वक्त गुजर जाए। मुझे अपने आप पर रश्क आ रहा है, लेकिन अपने माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं इनके लिए अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इनको उम्मियों वाली हरकत करते देखा है। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और हमें कुरान और सुन्नत से जुड़े रहने की तौफीक दे। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, इस पे थोड़ी सी बात कर दूं कि अगर हमारे रिश्तेदार जो स्टिल जिंदा हैं उनमें हम कोई ऐसी चीज देखें तो क्या करें? नंबर एक दुआ और नंबर दो कोशिश, उनको उस कुरान से जोड़ दे जो आपसे जुड़े, जिससे जुड़े हैं। वो नहीं किसी क्लास में आते ना, आप इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को उन तक तो पहुंचा सकते हैं, वीडियो ऑडियोज मौजूद हैं, डीवीडीज में मौजूद है, इसी के लिंक वेबसाइट से बनाएं, यूएसपीज में डालें, पाकिस्तान अब गिफ्ट में ये भेजा करें, इतना आसान है तरीका, यकीन करें। ये सबीरुल जन्ना जो आपको पीछे सुनाते हैं इसकी भी एक सीडी पहले पांच पारों की प्रोसेस में है, जब आती है पूरे पांच पारे हैं, कम से कम 6 महीने सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दौरे कुरान एक सीडी में मौजूद है, खुद अल्लाह दोस्तों को दे। बल्कि मुझे याद आया कि इधर एक स्टॉल पे सीडीज आई भी थी, शायद उसका कवर अभी रेडी नहीं है, 23 लेक्चर है उन 2 सीडीज में। आप जिस दिन आपको स्टॉल पे दिखे फौरन ग्रैब करें और अपने दोस्तों को गिफ्ट में भेजें। और वो MP3 सीडीज हर गाड़ी में मोस्टली अब चलती हैं, DVD नहीं है, MP3 है। आम कंप्यूटर में भी चलेगी, सीरीज प्लेयर में, एक में शायद 12 लेक्चर है, दूसरे में 13 लेक्चर है, कुछ काम बने ना। असल वर्थ इट ये है, ये गिफ्ट दिया करें दूसरों को। कपड़े जूते जेवर हर जगह मिलता है, कोई किसी को पसंद भी नहीं आता। यहाँ से हम ले जाए इतना महंगा, उनको वो वहां के माहौल, और वहां 2 दिन में वो गंदा भी हो जाएगा, बुर भी आ जाएगी, मैला भी हो जाएगा। तो वो चीज ना लोगों को दें जो लोग खुद अपने लिए लेते हैं, वो दें जो लोग नहीं लेते। और इसमें याद रखिए कि हर बंदा पैसे का गरीब नहीं होता, कुछ लोग शौक के भी गरीब होते हैं। वो पैसा दुनिया पे तो हजारों लगाएंगे, दीन पे 2 पाउंड नहीं लगा सकते। तो ऐसे लोगों को गिफ्ट दें, वो भी गरीब है, उनको भी आप सबके में से दिया करें कि इनको अल्लाह शौक नहीं दिया तो मैं इनके ऊपर खर्च करती हूँ गिफ्ट की सूरत में। सुबह ये इरम ने मुझे बताया कि इन्होंने 10 बुक्स ली हैं फाइंडिंग गरीब, तो मैं गिफ्ट में दूसरों को देना चाहती हूँ, मैं दे दूँ। मैंने कहा इससे अच्छा गिफ्ट और क्या, कोई पढ़ेगा तो आप ही का फायदा होगा। तो अब चॉइस और तोहफों का किबला भी तो बदलता जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वहां एक छोटा सा बुक स्टॉल बनाया है, बिल्कुल छोटा सा, तो उसमें ये और कपड़े चीजें बाकी भी होती हैं जो डोनेशंस में आती हैं, सही नई चीजें वो भी रखते हैं। तो मोस्टली मैं जिन साथियों को जानती हूँ स्टाफ के, और अब ऑफकोर्स वो सारे स्टूडेंट भी हैं, वो गिफ्ट लेते ही वहां से हैं, ये सोच के स्कूल का भी फायदा हो जाएगा, चीज की चीज मिल जाएगी। किताब ना भी लें, कपड़े भी ले लेते हैं, कुछ भी, कोई अबाया ले लेता है, कोई स्कार्फ लेता है, कि चले जो भी तोहफे का पैसा तो उधर। और वाकई मैं खुद सोचती हूँ कि किसी को अगर 20 की चीज देनी है तो ऐसी जगह से अगर आपको उससे जरा महंगी चीज भी पसंद आ गई तो दोनों तरफ आपका ही फायदा है ना। तो इससे हकीकत में आप देखेंगे कि आपके अंदर नेकियां करने के कई नए रास्ते दिखेंगे आपको, और जोश और जज्बा भी होगा। फिर ये कहती है कि आज एहसास हुआ कि अपनी बुराइयों को वाकई दूर करना है, नादानिस्तगी में बुराइयों से बचना है, यानी जो ना जाने में की हुई बुराइयां उससे बचना है। मैं बात पूरी नहीं कर सकी कि जो रिश्तेदार जिंदा है उनके लिए तो ये सब करें जो भी जिक्र हो गया लंबा, जो फौत हो चुके उनका क्या करें, दुआ करें और कसरत से उनके लिए आप सदका जारिया बने। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, वो दुआ है कि माँ बाप आपसे नाराजगी की हालत में भी फौत हो जाए तो आप ये दुआ पढ़ें तो अल्लाह उनको आपसे राजी कर देगा। ठीक है, कसरत से दुआ, तस्करा ना करें उनका, वो अपने काम पे पहुंच गए, अल्लाह से कहें कि अल्लाह वो बेचारे अनजाने लोग थे, भोले थे, इल्म नहीं था, आप उतना ज्यादा इल्म लेकर अब आप उनके लिए सदका जारिया बनना है जी। ऑनलाइन पे भी ये सीडीज मिल सकती हैं, आप लोग ऑनलाइन पे बात कर सकते हैं। ईमान पैदा करना है और अमल सालेह करना है, ये बस एक आधा और है। जहालत वाली वीडियो देख कर दिल कांप गया, जुबान पे इस्तग़फार का जिक्र बेख्तियार शुरू हो गया, और कुरान से इंशाल्लाह जाहिलियत खत्म होगी। बिल्कुल अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, यही कोशिश पहले भी थी, अब और बढ़ गई है कि जहालत दूर करनी है, अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद करे, आमीन। चंद इंग्लिश के कमेंट्स हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। ले लीजिए प्लीज।
A few of the English comments. Once we commit a sin, then we must do tawbah before it's too late. No one will save us on the day of judgment except our good deeds. I learned an intelligent person will never know. I've learned an intelligent person will never knowingly do things that will harm them. But when I disobey Allah, I am harming myself in this life and the next. I ask Allah to connect me to Him sincerely. Amen. A deep feeling of regret that we wasted so much time overlooking the things we should be doing and getting sidetracked. May Allah give us the tawfiq to accept Hidayah. We have to save ourselves from all sins, as because of one sin we may not be able to enter Jannah.
चलिए अब एक दफा फिर तिलावत सुना है किसी और आवाज में, किसी और कारी की आवाज में, तो इंशाल्लाह अगली तफसीर शुरू करते हैं।
أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون
खुद पढ़ना शुरू करते हैं जब आवाज ना आए ना, तो टाइम वेस्ट नहीं किया करें। जी एकदम चला दें पीछे से। आप सब मिलके पढ़िए जरा, पहली आयत सब मिलके औसबिल्ला के बाद पढ़े। सबकी आवाज एक जैसी आनी चाहिए प्लीज। क्या हो गया, पढ़ते जाइए। بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 83 سے آگے کچھ چیزیں پہلے سبق کے بارے میں جو سبق کا بنیادی مرکز ہے یا مرکزی خیال چند باتیں اپنے لفظوں میں سمجھ لیجئے تاکہ بعد میں پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو آج کا سبق جو ہے یہ تورات کا حصہ ہے کچھ ینگسٹرز کو خاص طور پہ شوق ہوتا ہے کہ ہم بائبل پڑھیں اور ہم دیکھیں کہ ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں تو ان کے لیے آج کا سبق بہترین ہے کس وجہ سے کہ تورات اور انجیل پیچھے جیسے ہم نے کئی بار بات کی کہ وہ بدل چکی ہے بہت تبدیلیاں کر دی آج بھی اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ موجود ہے پورا تو نہیں نکال سکتے پورا نکالیں گے تو فکشن بن جائے گا لیکن ہمارے اور آپ کے پاس کوئی کرائیٹیرین نہیں ہوتا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے یہاں تک کہ ہم قرآن پاک کا بنیادی مضمون سمجھتے ہوئے پچھلی کتابوں کا مزاج سمجھیں. لیکن اگر واقعی آج کسی کو شوق ہے تورات اور انجیل پڑھنے کا سیکھنے کا, تو قرآن پاک میں الحمدللہ وہ حصے جو اللہ کی طرف سے تھے جو آج بھی ویلڈ ہیں. آج اسلام کے اندر بہت سارے جو احکامات ہیں یہ یہودیت اور کرسچینٹی کے اگینسٹ نہیں ہیں, انہی کے ساتھ ہیں. لیکن انہوں نے اپنے خیالات میں کچھ چیزیں جب بدلی تو اس بدلنے کا نقصان کیا ہوا کہ اس کے بعد وہ چیزیں ان کی زندگی سے نکلتی گئیں. بالکل یہی ہوا. تو آیت نمبر 83 جو ابھی ہم شروع کریں گے یہ تورات کے احکامات کی آیت ہے. 10 کمانڈمنٹس کا نام آپ نے سنا ہوگا, احکام عشرہ, یہ وہی ہے. اور بنیادی کچھ چیزیں کبھی بھی نہیں بدلی. ہر نبی کے دور میں کچھ بیسکس جو کبھی نہیں بدلے وہ آج بھی موجود ہیں. اور الحمدللہ بھی جو آیت ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کے اندر خاص طور پہ آپ کو ایسے کئی چیزیں ملیں گی کہ اگر آج مسلمانوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر کسی کو اس پہ ترس آتا ہے یا غصہ لگتا ہے تو ان کی اپنی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں. ٹھیک ہے, اصل دین کیا تھا وہ بھی اس سبق میں ہم دیکھیں گے, اور بنی اسرائیل کا اس کتاب کے معاملے میں رویہ کیا تھا وہ اسے اگلے حصے میں دیکھیں گے. آیت 84 سے اگلی جو دو آیت 86 تک ہم پڑھیں گے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ تورات کے نزول کے بعد بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اور ان ساری چیزوں کو پڑھتے سنتے وقت ہم اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں. باقی جو سبق کے اندر میں بنیادی چیزیں آنی ہیں خاص طور پہ, وہ ہم آیت نمبر 84 کے شروع میں کریں گے. ابھی چلتے ہیں آیت نمبر 83 پہ. بہت سمپل آیت ہے اور اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ قرآن پاک میں بہت دفعہ آئیں گی, اس لیے یہاں ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے. لیکن کم از کم اس مضمون کو سمجھ کے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت احکامات انبیاء کرام کے ذریعے قوموں کو دیے, لیکن ناشکرے لوگ اور اللہ کے دین کے اوپر خود کو مطمئن نہ کرنے والے لوگ غیروں سے تو ادھر ادھر کی چیزیں مانگتے ہیں لیکن اپنے دین کی خوبصورتی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آئیے ذرا ترجمے کے ساتھ چلتے ہیں ان آیتوں پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 83, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا. کہاں لیا تھا؟ تورات میں لیا تھا. جیسے آج ہم مسلمانوں سے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بہت ساری باتوں پہ عہد لیے گئے. کیا تھے اس عہد کی ڈیٹیلز میں؟ سب سے پہلے لا تعبدون الا اللہ, نمبر 1 لکھ لیجئے اس پہ. کسی بھی دین کے کا نقطہ آغاز اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں کہ زندگی کا مقصد, آمد بر زندگی کیا ہے؟ بندگی. عبادت کرنے کا حکم دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خوبصورت طریقے سے بتا دیا کہ بنی اسرائیل جو اپنے دور کے مسلمان تھے, اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی وہی احکامات دیے جو آج ہم مسلمانوں کو دیے گئے. اور اس کا آغاز کہاں ہے؟ کسی کو بھی اگر آپ نے دین کی بات بتانی ہے تو کس بات سے شروع کرے؟ تعبدون الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور انسان عبادت کیسے کرتا ہے؟ تو عبادت کی عموماً 4 ممکنہ صورتیں ہوتی ہیں, لکھ لیجئے, فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک ہوتی ہے بدنی عبادت, جسم کے ساتھ ہم جھکتے ہیں. اس میں نماز روزہ نہیں, نماز اور روزہ بالکل, یعنی جس میں ہمارے جسم کا کچھ نہ کچھ حرکت میں آنا بھی ہوتا ہے اور ہم اپنے جسم کو مختلف چیزوں میں پاتے ہیں. وضو کرنا, ٹھنڈا پانی ہے گرم ہے کچھ بھی ہے, یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری ہوتی ہے عبادت لسانی, زبان سے عبادت کرنا. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ذکر, اذکار, دعائیں مانگنا, تبلیغ, یعنی ہر وہ نیکی کی قسم کہ جس میں ایک انسان کی زبان انوالو ہو جاتی ہے. تیسری قسم ہوتی ہے عبادت قلبی, دل کی. دل کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے توکل, شکر, دلی جذبات, اللہ سے محبت, اور اسی طرح کی دل کی جذبات. اس میں انسان کا تقدیر پہ راضی ہونا بھی آ جاتا ہے. इसमें इंसान का अल्लाह सुबहाना ताला के फैसलों पे राजी होना और सब कुछ यानी एक किस्म की कंटेंटमेंट की कैफियत का आना भी है। इसके बाद इबादत की चौथी किस्म होती है इबादत, आप बताइए क्या रह गया पीछे? माल की, शाबाश, माली इबादत। ये इबादत के वो हिस्से हैं, वो तरीके हैं जिसमें इंसान का माल लगता है। दिस इज ज़कात, सदका, उशर, और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना किसी ना किसी चीज़ में। तो गोया के इबादत की ये सूरत उनके पास भी थी, हमारे पास भी है। क्या आज हम मुसलमानों को भी अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया? पहला दर्स ही बंदगी का है, इया का नाबुदो। हम सब अपने आप को चेक करें, खुद को मुसलमान कहते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन क्या अल्लाह सुबहाना ताला बंदे की इस बात को मान लेता बगैर अमल के? सवाल पैदा होता है कि इबादत पे अपना दिल कैसे लाएं? आप सब कभी ना कभी इस मसले का जरूर शिकार हुए होंगे कि दिल नहीं करता नमाज पढ़ने को। वो कहते हैं ना कि जानता हूं सवाब जोहद, लेकिन दिल उधर आता नहीं, इबादत की तरफ दिल नहीं आता। बस दिन तो ऐसे होते हैं कि हमारा दिल खुद ही लपक लपक के जाए नमाज की तरफ जाता है। तस्बीहां भी हाथ में लोग लेते हैं और कभी नहीं होता, तो क्या करें? यानी हमारा सवाल क्या है कि कैसे खुद को इबादत की तरफ लाएं? तो सबसे पहले दुआ। अल्लाह के नबी सल्लम की एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, जो ही आप सलाम फेरते थे फर्ज नमाज के और उसके कमो बेश इर्द गिर्द आप दुआ मांगा करते थे, रब्बी आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र करूं, शुक्र करूं और खूबसूरत तरीके से तेरी इबादत करूं। तो मुझ समेत आप में से जिसको भी मुश्किल लग रहा है ना इबादत करना, नमाजों में दिल नहीं लगता, रोजे पे दिल नहीं है, ताल्लुक बिल्ला में कमजोरी है, तो दुआ मांगे। दूसरी चीज, ईमान बढ़ाने की कोशिश करें। ईमान वो इंसेंटिव है जो इबादत पे माइल करता है। इसको दूसरे लफ्जों में यूं समझिए कि जिसकी बड़ाई को हमारा दिल मान जाता है ना, हम उसके लिए खड़े भी हो जाते हैं, रुकू की तरह झुक झुक भी जाते हैं। कभी आप किसी भी बड़े शख्स को जहन में लाइए जिसके सामने अमूमन लोग फिर झुकते हैं, वजीर, मशीर, एम्बेसडर, सदर और दिस एंड दैट, या फिर जिनके दिल दुनिया की चीजों में लगे होते हैं वो दुनिया वालों की तरफ झुकते हैं, गुलूकारों, अदाकारों को। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना है? अपने दिल में अल्लाह की बड़ाई को महसूस करना है, पुख्ता करें। ये कैसे होगा? वो तमाम काम करे जिससे ईमान बढ़ता है। मसलन ना, ईमान किससे बढ़ता है आप बताइए जी? ईमान तो पहले किसी की भी बात सुनते हैं, पढ़ते हैं तो उसके ऊपर ईमान होता है ना। किसी सिंगर का गाना सुनेंगे तो उससे प्यार होगा ना, किसी आर्टिस्ट के आर्ट को देखेंगे तो उससे माहिर होंगे ना। तो अल्लाह से मोहब्बत चाहते हैं तो अल्लाह ताला का शाहकार क्या है इस दुनिया में? कायनात नहीं है, ये कायनात भी है। कुरान वो पकड़ेगा जो कायनात को पढ़ चुका होगा। पहले गौर व फिक्र करें, ये चांद किसने बनाया, ये बादल कहाँ से आ गए, ये बारिश कहाँ से हो गई, यानी गौर व फिक्र करें, नेचर के करीब रहें। आप अपना इलाज खुद कर रहे हैं ना, दूसरे तो नहीं करेंगे ना, तो आप खुद करें। आर्टिफिशियल दुनिया से निकलकर खुली दुनिया में जाएं। मसलन आपको बैठना ही है ना सबक याद करने, तो आप पर्दे लगे हुए और बिल्कुल लाइटों में बैठने के बजाय खुली जगह पे बैठे, बालकोनी है तो उसमें बैठ जाए, पीछे गार्डन है तो उसमें बैठ जाए, और अगर थोड़ा सा एहतमाम करके किसी खुले गार्डन में शाम को चले जाएं, साथ अपना सुपारा ले लें, वहां आप जो तर्जुमा याद करेंगे वो आपको एक तो याद बहुत जल्दी होगा, बिल्कुल आपका जहन खुला हुआ होगा। गौर करें, बारिश हो रही तो क्यों हो रही, सूरज चांद क्यों है, आप गौर व फिक्र करेंगे ना तो इससे अल्लाह ताला से मोहब्बत महसूस होगी। फिर इसका अगला दर्जा है कुरान से ताल्लुक, जिंदा ताल्लुक, जो अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम में से अक्सर का शुरू हो गया है कि हम इस किताब को पढ़ते जा रहे हैं और अल्लाह ताला की मार्फत हो रही है। इसके ऊपर कोई लेक्चर सुनना है, कोई सबक याद करना है, कोई तफसीर के नोट्स लेने देने हैं, उसके ऊपर अपने आप को फोकस कीजिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसके अंदर एक और चीज जो होती है वो कि अल्लाह ताला के नामों पे गौर व फिक्र करना, असमाल हुस्ना पे गौर व फिक्र। ایک ایک نام کو آپ ویک نیم آف دا ویک بنا لیں. اس ہفتے میں نے اللہ کے نام اللہ پہ غور کرنا ہے, اگلے ہفتے الرحمن پہ, پھر الرحیم پہ. اور اس کے لیے ہفتے میں ایک آڈیو سننا مشکل بھی نہیں. ویب سائٹ پہ جائیں, اسماء الحسنیٰ کی سیریز میں ایک نام کی آڈیو سن لیں, اپنے آئی ٹیونز پہ ڈال لیں, آئی پیڈز پہ ڈال لیں اور سنتے جائیں, اور پورا ویک پھر اس صفت پہ غور کریں, پھر اگلے پہ. انشاءاللہ اس قرآن کے پورے کورس کے دوران آپ کے سارے نام بھی پورے ہو جائیں گے اور آپ محسوس کریں گے. اور اگر ہم یہاں آپ کو سنائیں, میں سوچتی ہوں اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں, لیکن پھر ہمارے وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ اس کو بھی آگے کہیں جا کے بھی ہم سیکھ سکیں تو ضرور سیکھیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں. جتنا زیادہ تقدیر پہ راضی ہوں گے اتنا آپ کو اللہ سے پیار ہوگا, اور اللہ سے پیار عبادت کی اصل ہے. ہم جو نماز نہیں پڑھتے نا, یہ نماز کو دل نہیں کرتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے پیار کوئی نہیں ہے. کسی سے محبت ہو تو اس سے ملاقات کو دل چاہتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو انشاءاللہ ہم نے چیک کرنا ہے. پھر اس طرح اللہ کے بندوں سے پیار کریں. کوئی بندہ دیکھے تو کہے اچھا یہ اللہ نے بنایا. بچوں کو دیکھیے, ہینڈی کیپس کو دیکھیے. اس طرح ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دل اللہ کے آگے جھکے گا. جب دل میں اللہ کی قدر آ گئی نا, تو عبادت ہوگی. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی ہو. آپ دیکھیے کہ کل جو ہم نے شرکیہ مناظر دیکھے, کیا کوئی کسی انسان کے آگے اس طرح گھٹنے ٹیک کے بیٹھ سکتا ہے اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو؟ تو لا تعبدون الا اللہ کے لفظ کو سمجھیے, شرک کی نفی ہے. یہ جملہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ, ہے نا, کہ بنی اسرائیل کو ہم نے یہ حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو. لیکن یہ جملہ نہیں ہے, لا تعبدون الا اللہ. یہ بالکل وہی ہے جو ہمارے کلمے میں بھی آتا ہے. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کتنا لمبا جملہ ہے, لا پھر الہ پھر اللہ پھر اللہ, چار لفظ بولے. دو لفظوں میں یہ بات ہو سکتی تھی, الہن اللہ, ہمارا الہ اللہ, الہن اللہ, الہن اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. لیکن فرق کیا ہے؟ الہن اللہ میں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ہمارا لارڈ ہے یا اللہ ہمارا الہ ہے, یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے. وہ بھی ہے, تو بھی ہے, میں بھی ہوں. لیکن لا الہ الا اللہ میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور ہی نہیں ہے. وہی مثال ایاک نستعین اور ایاک نعبد والی. تو یہاں لا تعبدون الا اللہ میں دیکھیے کہ پھر انسان کی عبادت اللہ کے لیے ہو. اب جو میں نے آپ کو چار ممکنہ اقسام لکھائی عبادت کی, آپ سب کے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے. تین چار رائے, کم از کم چار رائے اپنے نوٹس میں چھوڑ دیں, اور اوپر ایک سوال لکھیں, کیا اللہ کے سوا کسی اور کی جسمانی عبادت کرتی ہوں, مالی, قلبی اور لسانی؟ چاروں کے نام بعد میں لکھ کے آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے میرا بدن جھکتا ہے. دیکھیے کسی کے رستوں میں چلنا پھرنا, تھکنا, یہ بھی تو عبادت ہے نا. جسم تھکتا ہے, میری تھکن کس کاموں میں ہوتی ہے؟ گناہ کے کاموں میں, بازاروں کے چکر لگا کے. میرا مال کہاں لگتا ہے؟ مالی عبادت ہے. تو آپ فیل کر لیں گے کہ آپ سب کو اپنے اپنے طاغوت نظر آ جائیں گے کہ کہاں کہاں اللہ کا شریک بٹھایا ہوا ہے. کوئی ہندو بیچارہ تو ایک بت بٹھا کے بیٹھ جاتا ہے نا, تو ہم کہتے ہیں یہ مشرک ہے. ہم نے تو عبادت کے راستے میں چاروں قسم کی عبادت میں 40 قسم کے بت بٹھائے ہوئے ہیں. دنیا پہ اتنا مال لگ جاتا ہے کہ دین کے لیے وقت نہیں بچتا, دنیا کے لیے اتنا تھک جاتے ہیں کہ عبادت کیا نماز میں وقت نہیں ملتا, زبان پہ دوسروں کے تذکرے ہیں تو ذکر کہاں سے ہوگا. تو یہاں سے میں اور آپ اپنا علاج کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح کروا دے. اب جب اللہ کی قدر آ گئی نا, تو پھر یہ آپ کا میرا تعلق باللہ مضبوط ہوا. اب اس کا عملی اظہار کیسے ہوگا, اگلی باتیں اس کی ہیں. دیکھیے اللہ کی ذات تو ہے نا آسمان پہ, اور ہم سے آج چھپی ہوئی بھی ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے. تو کیسے پتہ چلے کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں؟ تو اس کا اظہار ہوگا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ سے شروع کر کے وَآتُ الزَّكَاةَ تک جو اگلے احکامات آ رہے ہیں. گویا کہ آپ کہہ لیں کہ لا تعبدون الا اللہ میں اللہ کی معرفت مل گئی, پیار بھی ہو گیا, قدر بھی ہو گئی, ہم نے شکر بھی کیا وہ ہمیں یہاں لے آیا. اب اس کا عملی اظہار بندوں کے ساتھ معاملے میں ہوگا. ادھوری تصویریں ہیں. آج کے پورے سبق کا اگر آپ ٹاپک لکھ لینا تو ادھوری تصویریں صحیح صورت نہیں دکھاتی. آدھے نوٹ سے پوری جنت کبھی نہیں ملتی. آپ کے پاس 50 پاؤنڈ کا نوٹ ہے نا, ہوتا ہے نا, تو آپ اسے کچھ خرید سکیں گے. 20 पाउंड का नोट होता है, आप उससे भी कुछ खरीदेंगे, 25 का शायद नहीं होता ना, क्या होता है? नहीं होता। आप ऐसा करें कि कहें कि गवर्नमेंट 25 का नोट नहीं बना रही, मैं खुद बना लेती हूँ। आप 50 के नोट को बीचों बीच से काटें, दो बना लें, कह दें लो भाई 25 ये हो गए, 25 ये हो गए। क्या इस 25-25 से कुछ खरीदा जाएगा? अब ये 50 का छोड़े, 5 का भी नहीं रहा। आधे नोट से जिस तरह हम कुछ नहीं खरीद सकते ना, तो आधी इताद से जन्नत तो नहीं मिलेगी। कोई पुरानी चीज नहीं मिलती आधे नोट से, नई चीज कहाँ मिले ब्रांडेड, राइट? जब लोगों की जिंदगी में ये अधूरा दीन आता है ना, तो गड़बड़ शुरू होती है। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने एक पूरा कंप्लीट पैकेज दिया था, जो आज हम सबके सामने है इस आयत की सूरत में, और आज हम मुसलमानों को भी यही पैकेज मिला। लेकिन जब मजहबी जवाल आता है ना दीन वालों में, और दुनियादार उनके पीछे चल रहे होते हैं, तो उनका हाल क्या हो जाता है कि वो अधूरे दीन से पूरी जन्नत खरीदना चाहते हैं। कुछ लोग लाताबुदून इल्लल्लाह पे बड़े कामिल होते हैं, लेकिन इंसानी मामलात में फेल, बिल्कुल फेलियर के जज्बे पे। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ खुल के बता दिया कि अगर जन्नत चाहिए तो अल्लाह के साथ साथ वबिल वालिदैनि एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। कैसे? या नोट कीजिएगा, ये नहीं कहा कि माँ बाप को उनका हक दो। हक देना और होता है, बराबरी होती है। एहसान कहते हैं किसी को उसके हक से ज्यादा देना। एक शख्स ने गालिबन इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हो से कहा कि मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधों पे उठा के हज करवाया, और जिस दौर में पूछा होगा आप सोचिए वो हज कैसा था, कंधों पे उठाना, ना कोई उस वक्त व्हील चेयर थी ना कुछ। तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो कहा कि तूने माँ का हक तो छोड़, तूने उसे एक दर्द का हक अदा नहीं किया जो उसने तेरी डिलीवरी के वक्त पे सहा था। ठीक है, तो हक नहीं दे सकते तो एहसान कैसे? क्या तरीके कार है माँ बाप के साथ एहसान का? सिर्फ पिन पॉइंट्स में 7-8 चीजें लिखवाती हैं, नोट करें। नंबर एक, माँ बाप को अपनी जन्नत समझना। नंबर एक, दिल में उनकी शुक्रगुजारी रखना। ये जो आवाज ऊंची होती है ना, हाँ आई डोंट, अम्मी चीख के बोलना, ये नाकदरी की अलामत है। जब तक अल्लाह की कदर नहीं होगी तो इबादत नहीं होगी ना, अभी ये देखा है ना। इसी तरह जब तक माँ बाप की कदर नहीं होगी कि हमारे लिए कितने अहम है, या थे कम अज कम, आज नहीं रहे, अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, जॉब भी करने लगे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, बाप की तो जरूरत खत्म हो गई, और खाना पकाना आ गया, सैंडविच बना लेते हैं, माँ की भी जरूरत नहीं रही। तो याद रखिए, कभी भी हम माँ बाप के आगे नहीं झुकेंगे। शुक्र गुजारी वो चश्मा है जहां से इताद फूटती है। आप शौहर की ना शुक्री करेंगे, आप कभी उनकी बात नहीं मानेंगे, आप माँ बाप की ना शुक्री करेंगे, कभी उनकी बात नहीं मानेंगे। तो शुक्र गुजारी महसूस करना। फिर तीसरा दर्जा क्या है? उनको वक्त देना। बस दफा हम बेजान चीजों से अपने बूढ़े माँ बाप को बहलाते हैं, स्वेटर भेज दिया, पर्स दे दिया, उनको आप चाहिए। बस बेटे कमाने में इतने मसरूफ है, माँ बाप के पास 10 मिनट नहीं बैठते। नहीं, आप उनको वक्त दें। आप हो गए हैं बड़े, जितने मर्जी हैं, आप यूनिवर्सिटी छोड़ के आप दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए, फिर भी आपके माँ और बाप आपके वक्त के मुंतजर होते हैं। तो अच्छे बेटे अपने माँ बाप को वक्त देते हैं, घर आके ये नहीं कि वो अपनी दुनिया में खो जाए, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, एक फोन कॉल। और याद रखिए, आप कहेंगे अच्छा हमारे तो माँ बाप करीब ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज गुर्बतें सिमटी हुई है, टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल्स, मैसेज, कैसे दुनिया ग्लोबल बनी हुई है। तो वक्त देना इनको। फिर इसी तरह अगली चीज क्या है कि अपने से कम अकल ना समझे अपने माँ बाप को। ये स्टूपिड मॉम, मॉम ऐसे बच्चे चीखते हैं जैसे बादल गरजते हैं, और माएं भी ना समझे, वो उसकी बात में फिर जवाब में कह रही थी खाना खा लो ना, वो जितने अकड़ते हैं हम उतना कड़ाते हैं। मैं कहती हूँ जो अकड़ते हैं उनको अकड़ा रहने दें, खड़े रहें, भूखे रहें। कभी आपका बच्चा चीख के बोले ना, अगर ये काम आप बचपन में कर चुके होते ना, तो अगर आज किसी मुश्किल में, तो ये कभी ना होती। बचपन से बच्चा बाप माँ के आगे, बाप के आगे बोले ना, माँ जवाब दे ना बाप जवाब दे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे स्कॉलर है माशाल्लाह, हयात है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, आप भी बहुत जानते हैं, करीबी रिश्तेदारी है हमारी उनसे। तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, हमारी अपनी भाभी उनकी बेटी हैं, तो वो बताती हैं कि हम छोटे थे ना तो हमारे अब्बू हमें सिखाते थे कि अम्मी से कैसे बोलना है। तभी होते ना बच्चे स्कूल से चीख के बोले, तो बीवी को उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ था कि तुमने इनकी बात का जवाब नहीं देना। और खुद अपनी माँ जो अपने बच्चों की अब दादी हैं उनके सामने बैठ बैठ के बच्चों को दिखाते थे कि जैसे रुकू की हालत में बच्चा रुकू नहीं तशहुद में जैसे बैठते हैं वक्फिज लहुमा जनाह जुल्ली मिन रहमा इस तरह बैठते अपने टिश्यू पेपर से माँ का नाक और आंसू साफ करते होते थे। करना पड़ता है हमारे बच्चे में देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कल वो भी यही करेंगे जो आज हम कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लें आपको खुद दिखेगा कि आपने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। बहुत सारी कहानियां इस पे हम बात जब डिटेल से करते हैं आगे करेंगे आज सिर्फ ये टॉपिक नहीं है लेकिन अगर आप इज्जत चाहते हैं ना तो आपको अपने माँ बाप की दुआएं लेनी पड़ेंगी। बदबخت हैं वो लोग जो अपने माँ बाप से बद दुआएं लेते हैं। जुरैह का नाम आता है इब्ने जुरैज का नाम आता है एक राहिब था नसारा में इबादत के लिए किसी जंगल में चला गया। अल्लाह का हुक्म देखिए कि माँ मिलने आई जब माँ मिलने आती है तो वो इबादत में है नमाज में है। तो फिर कहते क्या करूं माँ को बोलूं नमाज पढ़ूं क्या करूं इसी शश पंज में जवाब नहीं देता माँ चली जाती है माँ को नहीं पता अंदर क्या कर रहा है। दोबारा फिर माँ आई फिर यही सूरत हुई तीसरी दफा भी जब यही सूरत हुई तो माँ समझी कि शायद ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा जाते जाते बददुआ दे गई कह जुरैच तुझे मौत ना आए जब तक तू किसी फाहिशा का मुंह ना देखे। अल्लाह का करना देखिए जुरैच अपने हुजरे में इबादत कर रहे हैं बाहर एकदम शोर की आवाज आई दरवाजा खोल के देखा एक औरत है उसकी गोद में न्यू बॉर्न बेबी है और बस्ती के लोग उसके पीछे हैं और उसको पत्थर मार रहे हैं और कह रहे हैं बता ये किसका बच्चा बता ये किसका बच्चा। इतने में वो काफिला इनके औरत ने कहा ये बच्चा जुरैच का। अब लोगों ने बच्चे और औरत को छोड़ा जुरैच को मारना शुरू कर दिया। अच्छा जी मौलवी साहब ये बातें करते हैं अंदर से ये गुण है मारा क्या उसकी कुटिया तोड़ दी। जब ये सारा मामला हुआ तो उस वक्त जुरैच ने कहा कि ठीक है अल्लाह ताला तुझे पता है कि मैं झूठा नहीं हूं मैं झूठा हूं नहीं हूं नहीं था किया वो इन्होंने ये फेल तू मेरी बेगुनाही साबित कर। अल्लाह ने उस औरत के गोद के बच्चे को बुलवाया उसने पुकार के कहा जैसे तीन बच्चे बोले हैं बचपन में एक ईसा और एक ये एक और तो इस बच्चे ने कहा मैं जुरैच का ही मैं फलां गडरिए का बच्चा हूँ शेफर्ड का बच्चा हूँ यानी उस औरत ने उसके साथ बदफेली की थी इल्जाम इन पे लगा दिया। अब बच्चे को बोलता देखना ये कोई छोटा काम था उनको शर्म आई वो तौबा इस्तग़फ़ार अरे माफ कर दें उसे माफिया मांगने लगे आप बताएं तो हम आपकी कुटिया को सोने का बना दें। उन्होंने कहा सोने का ना बनाओ जैसी थी बस वैसे बना दो। और फिर उन्होंने क्या कहा कि असल में ये मेरी माँ की बददुआ थी जो पूरी हो गई उसने कहा था तो किसी फाहिश औरत का मुंह ना देखे जब तक तुझे मौत ना आए तो ये मेरा मेरी माँ के साथ मामला है तुम छोड़ दो। और मैंने इस पे एक कमेंट किसी का सुना हुआ कई दफा बता चुकी हूँ जहां भी बात होती है वो कहते हैं कि आज भी जो यंग लड़के लड़कियां दिन रात फाहिश औरतों को देख रहे हैं या मर्दों को देखते हैं ना स्क्रीनों पे ये असल में उनको माओ की बददुआएं लगी हुई है। आज जो हम बेहूदगी का तूफान अपनी जिंदगी में देखते हैं तो जब कोई यंगस्टर अपनी जिंदगी में करप्शन देखे तो फौरन अल्लाह से तौबा करे कि मैंने अपनी माँ या बाप को दुखाया हुआ है। ये दुआएं बहुत दूर तक जाती हैं वबिल वालिदैन एहसाना आप इसके ऊपर लेक्चर सुने सीडीज में भी है वो जो 6 सीडीज का सेट है बाहर मेरे माँ बाप मेरी जन्नत मेरी जहन्नम कुछ इस तरह से टॉपिक है माँ की दुआ जन्नत की हवा ये भी एक टॉपिक है बेशुमार इस पे बातें हुई हैं लेकिन हकीकत है कि हम आज इस दुनिया में खोए हुए हैं और हम अपने माँ बाप को बिल्कुल महसूस नहीं करना भी हो तो बस चंद रस्मी बातें या फिर उनके कहने पे कोई गलत काम कर लेंगे। जुरैच नाम था उस शख्स का नाम जुरैच था बच्चे के नाम की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आप देखिए कि दुनिया में उनकी बात मानिए और दुनिया से जाने के बाद ना सिर्फ ये कि उनके लिए दुआ खैर करें बल्कि खुद नेकियां करें अपने आप को बढ़ाएं उनके रिश्तेदारों से मिलना। इस पे एक लेक्चर में मैंने तकरीबन 18 या 21 एहसान के तरीके लिख बताए थे अगर कहीं आपको लेक्चर मिल जाए तो सुन लें और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा इस पे। लेकिन वबिल वालिदैनि एहसाना वालदैन के साथ एहसान करो। इसके बाद वज़िल क़ुरबा और क़राबत वालों के साथ भी वल यतामा और यतीमों के साथ भी वल मसाकीनी और मिसकीनों के साथ भी इन तीनों के साथ कुछ नहीं कहा गया आप नोट करें बस इनके नाम लिए गए। तो मुफस्सरीन कहते हैं बाज के एहसान के लफ्ज में ये सारे भी आते हैं क्योंकि अमूमन ये वो लोग हैं जो हमें देते कुछ नहीं रिश्तेदारों से तो बहुत मिल जाए ना तो बातों के तोहफे मिल जाएंगे आपको तानों के हार मिल जाएंगे जिसको गले में सजा ले عموماً قرابت والے ہمیں وہ کچھ نہیں دیتے جو کہ غیر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غیروں کے لیے ہم ایک اجنبی نام ہوتے ہیں، قدر بھی ہوتی ہے، اپنوں کے ساتھ چونکہ بچپن ساتھ گزرا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ بعض جگہ تو پھر سگے بھائی بہن وہ ایک دوسرے کے لیے ان کا جینا دھوبر کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر یہی بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کو دو. خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کے رشتہ دار ہیں اور وہ الحمدللہ ان کو ستاتے ہیں اور آپ صبر کرتے ہیں. آپ میں سے کسی کا کوئی ایک رشتہ دار ایسا ہے جو آپ کو دکھاتا ہے تو مبارک ہے آپ کو، آپ کے صبر کا ٹوکن ہے، خوش ہوا کریں. جب کوئی بھائی بہن آپ کا دل دکھائے، آپ کی قدر نہ ہو جائے اس نعمت سے، فیض یاب کیا ہوا ہے. یہ نہ کہا کرے کوئی مجھے دے تو میں دوں، کوئی کرے تو میں کروں، بلکہ آپ ان سے بڑھ کے کہیں، اس طرح سے کریں. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ قرابت کے کئی درجے ہوتے ہیں، اس پہ بھی جا کے سورت نساء میں بہت ڈیٹیل سے باتیں ہوں گی، لیکن قریبی بھی ہوتے ہیں، سسرالی بھی ہوتے ہیں، نسب کے ہوتے ہیں، سحر سسرال کو کہتے ہیں، اسی طرح رضاعت کے رشتے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں جو رشتے دار بھی ہیں اور ہمسائے بھی ہیں، ان کا تو درجہ بہت بڑھ جاتا ہے. جاری ذی القربیٰ کا لفظ آپ پڑھیں گے سورت نساء میں. دوسروں کے ساتھ اچھا بننا بہت آسان ہے. ہائے بائے ڈرائنگ روم مینرس، سب کہتے شی از ویری مچ ہاسپیٹیبل. پتہ لگ جاتا ہے جب اپنے بزرگوں اور اپنے بچوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرے. یہ کن چھری ہیں واللہ ہی، جو اس پہ چل گیا نا انشاءاللہ وہ خیر کے اندر ہوگا. پھر اسی طرح دیکھیں یتیم نابالغ بچے، انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے؟ تو کہا احسان کرو، ان کو ڈھونڈو، ان کی مدد کرو. حدیث میں آتا ہے وہ گھر بڑا خوش قسمت ہے کہ جس میں ایک یتیم پلے اور اس کی مدد کی جائے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. یتیم کے سر پہ پیار اور شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا اس کے بالوں کے برابر نیکیاں پاتا ہے. میں کہتی ہوں ہماری ترجیحات بدل جائیں، اگر ہم صحیح مومن بن جائیں نا، ہم اپنے گھروں میں ایک ایک یتیم بچہ پال لیں. بعض جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلان لوگ دکھی ہیں، تکلیف زدہ ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر پاتے. تو یہ اب نیکیوں کے موقع ہیں. یہ جو پسے ہوئے طبقے کے لوگ ہمیں اپنے ارد گرد دکھتے ہیں نا، یہ اصل میں نیکیوں کے چانسز ہوتے ہیں جن کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. دوست کے بیٹے کو، بچے کو تو 50 پاؤنڈ کا بھی گفٹ دینا آسان لگتا ہے، کوئی بات نہیں کل ہمارے بچے کو 51 پاؤنڈ کا دے جائے گی، لیکن ان کو ڈھونڈنا جن کا کوئی نہیں، یہ بڑی بات ہے. اور دین دکھتا ہی انسانوں کی صورت میں. دیکھیں مثال صرف سمجھیے گا، اللہ پہ نہ بات لیں. ہمیں اپنے بھائی بہنوں سے پیار ہوتا ہے نا، تو ہمیں ان کے بچے بھی اچھے لگتے ہیں. کیا آپ کو اپنے بھائی کے بچے سے اس لیے پیار ہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے؟ آپ کو بہن کی بیٹی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہ بڑی دبلی پتلی اسمارٹ ہے؟ نہیں، کچھ بھی ان میں خوبصورتی نہیں ہوتی، لیکن آپ کو اچھے لگتے ہیں. خون موج مارتا ہے نا، خون موجے مارتا ہے. بھائی بہن کا پیار اس کے بچوں سے پیار کرنے پہ مائل کریں، تو اللہ کا پیار اس کی مخلوق سے پیار نہ سکھائے. تو لا تعبدون الا اللہ کے اندر یہ سب کچھ آ رہا ہے. جس دن اللہ کی معرفت ہوگی نا، پھر آپ اپنے نام پہ نہیں کھلائیں پلائیں گے، اللہ کے نام پہ کھلائیں گے. پھر میرا اور آپ کا لینا دینا اپنے لیے نہیں ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا. اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری روایت ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا جس نے من آتا للہ، جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا، روکا تو اللہ کے لیے روکا، کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے. من احب للہ والابغض للہ، یہ مختلف حدیثوں میں الفاظ آتے ہیں. دو تو اللہ کے لیے، چھوڑو تو اللہ کے لیے، رشتوں کی بنیاد دین بناؤ، اور جب کسی سے اگر ناراضگی ہو تو اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے ناراضگی ہو. یہ ایک مکمل لائف سٹائل ہے جو انسان کی زندگی میں آئے تو بات بن جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح ہوں، جیسے یہ حدیث کو دیکھیے، اس طرح انگلیوں کو دیکھیے، یعنی انگلیوں کو، کہ یعنی دونوں انگلیاں. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس سے مطلب یہ کہ دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں ہے، یعنی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ یہ فرق، یہ لمبی انگلی اللہ کے نبی اور یتیم کی کفالت کرنے والا ذرا تھوڑا سا نیچے، یعنی اتنا معمولی فرق رہ جاتا ہے ان کے اندر کہ جو یتیموں کی مدد کرتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اگر وہ رشتہ دار یتیم ہو پھر تو کیا کہنے. صحابہ کرام ڈھونڈا کرتے تھے ایسے بچوں کو کہ جن کو ماں باپ نہیں پال سکتے اس کو دے دیں. پھر آپ دیکھیے لفظ مسکین کو بھی دیکھ لیں، حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ آپ اس ایک لقمہ دیں یا دو لقمے دے کے پلٹا دیں. حقیقت میں مسکین وہ ہے جو غربت کے باوجود سوال کرنے سے بچے. سفید پوش لوگ اپنی عزت بچا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ بیوہ اور مسکین کی خبر لینے والا اللہ کی راہ میں لڑنے والے کی طرح ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ ایسے عابد کی طرح ہے جو سست نہ پڑے, یعنی ہمیشہ عبادت میں رہے, اور ایسے روزے دار کی طرح جو افطار نہ کرے. بخاری اور مسلم کی روایت. کتنا مشکل ہے جہاد کرنا, جان کٹانی, راتوں کو جاگنا, روزے رکھنے, اور آپ انسانوں کے بیچ میں رب کو ڈھونڈ لیں. اور اب ان سب باتوں سے سب سے بڑھ کے خوبصورت بات, وقول للناس حسنا, اور کہو لوگوں سے اچھی بات. کن سے؟ ماں باپ سے, عزیز و اقارب سے, یتیموں سے, مسکینوں سے. ان سے تو ہے, لیکن اس کے علاوہ باقیوں سے بھی اچھی بات کرو. دیکھیے گا ذرا پیچھے کیا ہے, لا تعبدون الا اللہ, ہاں, پھر ماں باپ کی بات, رشتہ دار, مسکین, غریب. اب بیچ میں آ گیا وقول للناس حسنا, اور آپ ذرا اسے اگلے لفظ پہ جائیں, پھر ہم بعد میں واپس پلٹ کے اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد آ رہا ہے واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکات دو. ہاں, اب آپ سوچئے کہ قول للناس کا تذکرہ کہاں آیا؟ نماز اور زکات سے پہلے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا اخلاق, اچھا کردار, اس کی اہمیت نفلی عبادات سے اوپر ہے. یا فرضی عبادات کی بات نہیں ہو رہی, نفل سے اوپر ہے. یہ نہیں مطلب کہ نمازیں نہ پڑھو اور یہی کام اچھے کرتے رہو, جیسا کہ شروع میں ذکر کیا اور اگلی آیت میں تو تفصیل سے بات ہوگی اس پہ. دین ایک کمپلیٹ پیکج ہے, ادھوری چیزوں کی بات نہیں کرنی, پوری بات کو کرنا ہے. کیا کہا؟ اچھی بات کرو. اب اچھی بات کب کرنی ہے؟ جب دوسرے بھی اچھی بات کریں. یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو ہم سارا دن کرتے ہیں, ان دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں جو ہم سے کرتی ہیں, جو ہم سے خوش ہم ان سے خوش, وہ ہمارے گھر کھانے بیچتی ہیں, ہم ان کے گھر کھانے بیچتی ہیں. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے للناس, لوگوں سے. نوٹ کیجئے لفظ ناس کو. یہ نہیں کہا کہ دوستوں سے, فرینڈ سے, پیسے والوں سے, بیگمات سے, بلکہ عام لوگوں سے, کامن پیپل سے اچھی بات کرو. کیسے؟ کہ جب وہ تم سے جیسی بھی بات کریں. اب تھوڑی سی اس پہ میں بات کروں گی, کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بہت اہم بھی ہے اور پریکٹیکل نقطہ ہے. اور وہ کیا کہ اچھی بات کرنی آسان ہوتی ہے, لیکن بری بات کے جواب میں اچھی بات کرنا بہت مشکل لگتا ہے. جتنا زیادہ انسان دوسروں کے برے رویے کے جواب میں اچھی بات کرے گا, اتنا اللہ اس کو اوپر لے کے جائے گا. اگر آپ زندگی میں کوئی دین اور دنیا کے احسان کرے جنہوں نے آپ کو دکھ دیا, ان کو دے جو آپ کو محروم کرتے ہیں, آپ کے رشتے چھوڑ دیے انہوں نے, آپ ان پہ احسان کریں. آپ کا گھر توڑ دیا, آپ ان پہ احسان کریں. جنہوں نے آپ پہ الزامات لگائے, آپ ان کی تعریفیں کریں. جنہوں نے آپ کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دی, آپ ان کو دعائیں دیں. پھر دیکھیے اللہ آپ کو ساتویں آسمان کے بھاگ لگائے گا, عرشوں کے بھاگ لگتے ہیں اس بندے پہ جو لوگوں سے ان کے برے رویے کے باوجود اچھی بات کرے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ اچھی بات کب کرنی ہے, جب کسی کی تعریف کے اعتراف میں ہو. بعض دفعہ ہم کسی کی خوبی کا اعتراف نہیں کرتے, بہت مشکل لگتا ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ بندہ اچھا کام کر رہا ہو جو ہمارے شریکے سے ہو, سسرال سے ہو, بس پھر بڑا مشکل ہے. تو بعض دفعہ اچھی بات جو ہوتی ہے یہ اعتراف کا نام ہے, جی اس میں یہ خوبی ہے مانو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ عموماً ہم پیشہ لوگوں میں. مثلاً کوئی دین سیکھتا سکھاتا ہے, کوئی دوسرا بھی شخص دین سیکھتا سکھاتا ہے, پتہ ہے ان کے دل کو کہ اچھا کہتے ہیں, لیکن کبھی ان کی تعریف نہیں کریں گے, یہ سوچ کے کہ اگر ہم نے ان کی تعریفیں کی تو ہمارے لوگ بھی ادھر چلے جائیں گے, مشکل ہو جاتا ہے. ایک اچھا تاجر ہے, وہ دوسرے کی تجارت سے خوش ہے, پتہ ہے کہ یہ بہت اچھا تاجر ہے, کبھی اس کی تعریف نہیں کرے گا. پھر اسی طرح اس کا تیسرا درجہ دیکھیے, اپنے برابر کے لوگوں سے اور اپنے سے بڑے ہونا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن کمزور لوگ, پسے ہوئے لوگ, بے زور لوگ, ان کی تعریفیں کرنا بہت مشکل ہے. اس میں اب آپ اور میں اپنی لسٹ بنا لیں کہ ہم نوکروں سے کیسے بولتے ہیں. باہر کے ملکوں میں تو بول ہی نہیں سکتے نا, مشکل, اور ویسے بھی ان کو انگلش آتی ہے, ماسیاں ہماری سنتی ہیں, मासी को जब मेड कह देते हैं तो अखलाक भी बड़ा प्यारा हो जाता है। बाज दफा उनके लिए दरवाजे खुलते हैं, कोक ले लो, कैन ले लो, खाना खाएंगी आप, बिठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। लेकिन बल्कि ये भी कहते हैं फील फ्री टू हेल्प योर सेल्फ, जो लेना हो ले लो, खाना हो खा लेना। मासियों के साथ हमारा क्या हाल है? क्या हम अपनी नौकरानी और मासियों को सलाम में पहल करते हैं? वहां तो हाल क्या है कि बूढ़ा ड्राइवर है और वो छोटे से साहब, अहमद साहब, 3 साल के, साहब को सलाम करो। वो साहब है और बूढ़ा ड्राइवर उसके हुक्मों पे नाचता है, 60 साल का। हम तो अपनी मासियों के बर्तन तक अलग कर देते हैं, कहते नहीं इनके दांत गंदे हैं, इनके दांतों में कैविटीज होती हैं, जरासीम है। तो आपने गोरों के दांत देखे हैं जिनको आप खिलाएं पिलाएं, और जो आपके घर में जो मेहमान बन के आते हैं, कभी आपने उनके दांत चेक किए हैं? सिर्फ दिल में ख्याल है कि ये काला है ना और इसके कपड़े पुराने हैं तो ये गंदा ही होगा। याद रखिए, किसी बंदे का आला इखलास पता चलता है उससे छोटे लोगों पे। अपनी टोन देखे जरा इनसे बात करने की। फिर शिकायतें भी करते हैं तो भरमी के अंदाज में, गुस्से के जवाब में। ये नहीं होना चाहिए, शिकायत अब कर सकते हैं, अपनी बात को उतना नरम कर लें। बात कड़वी है ना तो अंदाज नरम कर लें। अच्छी बात करनी है अच्छे माहौल में भी और बुरे माहौल में भी, सबके साथ अच्छा होना है, ना कि सिर्फ चंद लोगों से। मैके वालों से आप अच्छे हैं तो ससुराल वालों से भी अच्छे रहें। आपकी बहन आपको क्या समझती है इसको भी लिखिए, और आपकी ननद आपको क्या सोचती है, और आपकी भाभी आपके बारे में क्या सोचती है, खुद लिखिए। बस तो रिश्तों को ही हमने तौबा इस्तग़फार एक ऐसी निशानी बना दी है कि सास गले की फांस। हमारे तो गाने जो शादियों में लड़कियों को सुनवा के भेजते हैं उससे भी ये एहसास दिलाते हैं कि उस घर में एक होनहार किस्म की सास और दरिंदा सिफत को दो नंदे बैठी होंगी। नंद गले की गली का गंध और सांस गले की फांस। फिर नीचे बैठते हैं तो खिदमतें करते हैं, कमरे में जाते हैं तो शौहर को अपनी सास की फिर जो बुराइयां सुनाते हैं। नहीं इस्लाम पूरा आएगा जब तक हमारा लोगों से मामला अच्छा नहीं होगा। पूछिए जरा खुद से, एक मुश्किल सवाल देने लगी हूँ। एक तो आपका कल टेस्ट लिया है ना, वो तो बहुत आसान था, ये टेस्ट बड़ा मुश्किल होगा। आप अपनी सास से पूछिए, मैं कैसी बहू हूं? नहीं है सास तो नंद से पूछ लें। और अगर कोई भी ऐसा बंदा जो ससुराल में है, खाला सास से पूछ लें, अपने शौहर से पूछ लें मैं कैसी बीवी हूं, अपने बच्चों से पूछिए मैं कैसी माँ हूं। हम अपने बच्चों पे भी बहुत चीखते हैं, ये भी नोट कीजिए। कमजोरों में ये गरीब भी आते हैं, चीखे बगैर हमारी बात ही नहीं होती, कहते हैं ये सुनता ही नहीं, आदत जो डाल दी बचपन से चीखने की। देखिए मैं अक्सर आपको ये बात कहती हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब भी किसी से बात करूँ मैं अपने ऊपर लेती हूँ। ईमेल लिख रही हूँ, टेक्स्ट मैसेज करूँ या मुंह से बोलना तो बहुत कम पड़ता है। जुमलों की जगह अल्फाज बोले, एक लफ्ज बोले नमाज, टिक 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 बेटा नमाज, ये नहीं उठो नमाज पढ़ो, पढ़ते नहीं, सुस्त मारे हुए, कहर पड़ गया तुम पे, नहीं बेटा नमाज, बेटा आपकी जन्नत, बेटा आपका नुकसान हो रहा है। आज सुबह भी किसी बच्चे से बात हो रही थी तो मैं सुन रही थी, तो मैंने भी उससे पहले बात की तो मैं उसको एक, आजकल वो कहते हैं ना कि हेड स्टार्ट दे रही हूँ कि बेटा आपने ये लूज नहीं करना कि आपने पांचों जमात से नमाजें पढ़नी है। तो आज सुबह जब मैंने उसको उठाया तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा बेटा, यानी अपने लफ्जों में जो उसको समझाना था वो यही कहा कि आप अपनी बाजी हारना तो नहीं चाहते, यानी 5 हो गई हैं, अब आपने पूरे हफ्ते की पढ़नी है। तो बाद में मेरे हस्बैंड भी जब उस बच्चे को नॉक कर रहे थे ना तो वो भी उसको अपनी जबान में यही कह रहे थे कि बेटा आपको, यानी आप, यू वांट टू लूज योर रिवॉर्ड, यानी घर पढ़ोगे तो एक, बाजार मस्जिद में जाओगे तो 27, यू वांट टू बी रिच, यू वांट पैराडाइज, नमाज बेहतर है कि नींद बेहतर है? और यकीन करें बच्चे प्यार की बात ज्यादा सुनते हैं। बाज माँ इतना चिल्लाती हैं, मैंने अपनी आंखों से कई ऐसे मुशाहदे किए हैं कि बच्चे फिर ढीठ बन के लेटे रहते हैं कि अब माँ टले, थोड़ी देर जाके कमरे में दरवाजा गुस्से से बंद करे फिर उठेंगे, क्योंकि अब इसके सामने क्यों उठे, इसने हमें गुस्सा चढ़ा दिया। तो एक बात याद रखिए, हमेशा के लिए लोगों की अना को नहीं हट करना। तबलीग में भी हम बदतमीजी करते हैं, ये तबलीग के अंदर ही बात हो रही है। लोगों के जमीर को उठाएं, उनकी अना को ना जगाएं। क्यों? अना जो होता है ना ईगो, ये एक सोया हुआ शेर है, टाइगर सोया ही रखे। हम तबलीग के दौरान लोगों की अना को उठा देते हैं, वो शेर की तरह फिर आगे से धाड़ते हैं। तो कुल लिन्नास ही हुस्ना, गलत इस्तेमाल जो होता है ना जुबान का, कयामत के दिन नेकियों को ले जाएगा। हमारी मासी से ग्लास टूट जाए, ग्लास तोड़ दिया ना, ये ना के टूट गया, ये पूछे कि आपके हाथ पे चोट तो नहीं लगी। और आज जिनके ऊपर हम चीखते हैं ना, कल हमारी नेकियां उनके पलड़े में चली जाएंगी। और अल्लाह रहम करे एक मासी जरा हमसे एडवांस तो ले जाए आज 2,000 रुपये देना बाजी, और अल्लाह ना करे अगले दिन वो ना आए, तो फिर जो हमारी फोन टॉक्स है, और मियाँ भी कहेंगे और सर पे चढ़ाओ, वो नहीं आएगी, भाग गई, ये पैसे के ये बड़े ना शुक्रे, अब नहीं ये आएगी, ये बहाने बनती हैं बनाती हैं, काम के मिल गया होगा ना। आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने पूछा एक दफा, हजरत उकबा बिन आमिर ने कहा, अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी बात बताएं जिसमें मेरी निजात हो। फरमाया तीन बातें करो, नंबर एक जुबान पे काबू रखो, कंट्रोल करो, फिर तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए कुशाइश हो, यानी बिला जरूरत घरों से बाहर ना फिरो। ये औरतों को नहीं कहा, मर्द को कहा गया। जिस तरह औरत के लिए बिला मकसद घर से बाहर ऐसे ही आउटिंग, घूमना फिरना, विंडो वॉचिंग ना पसंदीदा, मर्दों के लिए भी ना पसंदीदा। काम के लिए तो जाएंगे, लेकिन सिर्फ आधी आधी रात दोस्तों के साथ पान छालिया खाने के लिए जाना, ये ना पसंदीदा। बहरहाल, और तीसरी बात, अपने गुनाहों पर रो, कसरत से रो, क्राई ऑन योर सिंस, अकेले में बैठ के आप रोया करें, मैंने कितने गुनाह किए। और कभी किसी को तन्हाई मिल जाए ना, ये खुशकिस्मती है। सब चीजों से बेनियाज करके खुद को रब से जोड़े आप, क्योंकि जिस दिन हमने मरना है उस दिन भी हमारा सिर्फ अल्लाह से ही ताल्लुक होना है। अपने आप को लें, देखें, कम बोले, कुलु लिन्नासि हुस्ना। आपने फरमाया कि दो जुमले ऐसे हैं कि जो जुबान पे बड़े हल्के हैं लेकिन नामे अमाल में बहुत वजनी होंगे, और वो क्या है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अलअजीम, ये बोला करें, जिक्र से तार रखें। खामोशी अच्छी है, आपने फरमाया नजा मन समत, निजात पा गया जो खामोश रहा। एक रिवायत में आता है कि अच्छी बात भी सदका है। अच्छा, आप देखिए कि ये जो बातें हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ना इस आयत में, ये फंडामेंटल्स ऑफ शरीया हैं। ऑल शरीयतें जितनी पीछे गुजरी उनसे लेके आज तक हर नबी की तालीमात में ये बातें मौजूद थी। हम सबको भी इसके अंदर गौर व फिक्र करना है। आखिरी चीज, कुलु लिन्नास हुस्ना में अल्लाह की बात बताते हुए, जिसका थोड़ा सा तذکرہ बच्चों के साथ बाद में हो गया, लेकिन दीन की बात करने वाला कौन है? अल्लाह ताला फरमाते सूरह हमीम सजदा में आप पढ़ेंगे, वमन अहसन कौलम मिम्मन दअ इलल्लाह, उससे भी अहसन कौन है बात में जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। वहां भी वही लफ्ज है जो यहां है हुस्ना। तो सबसे पहले कुलु लिन्नास हुस्ना में यहां लिख लें कि अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना ये बेहतरीन बात है। आप और मैंने कितनी कोशिश की, कितनी फोन कॉल्स की लोगों को किताब से जोड़ने पे, कितनों को जाके पर्सनली विजिट किया कि मैंने लोगों को अल्लाह की दीन से जोड़ना है, तबलीग दावा। आज हम कहते हैं चंद मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, न्यू मुस्लिम लोग के जो हमें दावत का काम समेटा है, हमें जरूरत ही नहीं इसकी, नहीं, तबलीग करनी है अच्छे तरीके से, और फिर उसमें भी तकबुर ना हो, आजजी, टूटा हुआ अंदाज हो आपका बात करने का, किसी के स्टेटस को सामने रखकर बात करने के बजाय हर तबके के लोगों से एक तरह बात करें। फिर आप देखिए कि टॉन्ट नहीं होनी चाहिए तबश्रे की बुराइयों का, लेकिन स्टाइल में तहकीर या तमस्खुर या ठट्ठेबाजी, ये अंदाज नहीं होना चाहिए। हिकमत से बात करें, स्माइल के साथ बात करें, सिंसियरिटी के साथ बात करें, एतराज का अंदाज ना हो, फिर आवाज में उतार चढ़ाव हो, कभी जज्बात की गर्मी, कभी स्पाट, कभी तेज बोले, कभी आहिस्ता बोले, कभी ऊंचा बोले, कभी नीचा बोले, ताकि अगला सो ना जाए। बाज लोग बात करते साथ बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आंखें मटकाते हैं, कमर पे हाथ रख लेते हैं, घूम घूम के दिखाते हैं, नेवर डू दिस, ये हुस्न का अंदाज नहीं है। कभी भी नोट किया करें कि आपकी बात करते हुए कैसी होगी। आप देखिए जो इंसान का अंदाजे गुफ्तगू होता है ना, स्टाइल ऑफ टॉकिंग, ये उसके अंदर का तर्जमान होता है, इंडिकेट करता है कि वो बंदा अंदर से कैसे है। जिसका अंदर खूबसूरत होगा ना, जिसके अंदर लोगों के लिए दर्द होगा, मोहब्बत होगी, उसके अंदाज में खूबसूरती खुद ब खुद आ जाएगी। दिल खूबसूरत होगा ना, तो जुबान खूबसूरत होगी, बस लोगों को कहें बात करें, कहते नहीं हमें तकरीर करनी नहीं आती, तो तकरीर की तो जरूरत भी कोई नहीं होती, तबलीग में तकरीर नहीं चलती, उसमें तो सेल्फ प्रोजेक्शन होती है, तकल्लुफ नहीं है, बल्कि सादी सी बात करें, दर्द वाली बात आधे जुमले से भी बोलेंगे ना तो अल्लाह ताला दिल में उतार देगा। अब ये कितने खूबसूरत अहकाम थे जो कल उनको और आज हमें मिले। अकीम उस्सला, नमाज पढ़ो। नमाज क्यों पढ़ो? इसलिए कि ये सारे काम करने में देगी। खाता है नंबर एक वक्त की पाबंदी हो, ये नहीं कि अपनी मर्जी से पढ़ लो सारी नमाजें, रात को आके पढ़ लो घर में, सारा दिन लोगों को दे दो और रात को चंड ठोंगे मार लो कि अल्लाह तुझे भी कुछ दे रहे हैं। मैं इसको अक्सर एक मिसाल से बताती हूँ कि अगर आपसे घर का कोई बड़ा पानी मांगे, सारा दिन आप उसकी पुकार पे पानी ना दें, दो तीन बार वो मांग के चुप हो जाए, और रात को सोने से पहले खूबसूरत सी ट्रे निकालें, एक ग्लास में दूध, दूसरे में पानी, तीसरे में जूस डालें और ले जाएं अपने उस बुजुर्ग के पास, ये है वो सुबह वाला ग्लास, ये है दोपहर वाला ग्लास, ये है शाम वाला ग्लास, पी क्योंकि बेटा मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम जाओ। हम अल्लाह के साथ यही करते हैं कि तेरे पास तब आएंगे जब कोई दूसरा नहीं, और जवाब मौजूद है जी, काम पे जाते हैं, जॉब करते हैं जी, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जमीन पे तो रहते हो ना, अल्लाह की जमीन है, तो हमेशा बंदे का हक देते हुए अल्लाह का हक ले देना। किया क्या? सुम्मा तवल्लैतुम, तुम फिर तुमने मुंह फेर लिया, किससे? इन सारे अहकाम से। ये किसके लिए शिकवा है? कल के मुसलमान भी और आज के मुसलमान भी। आज हमने मुंह फेरा हुआ इन चीजों से, अल्लाह अकबर, वाकई पूरे का पूरा मुंह फेरा हुआ है। हाँ कलीलम मिनकुम, थोड़े तुम में से बचे हुए हैं, कैसे? कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, और थोड़ी करते हैं, ज्यादा नहीं करते, ये भी मतलब है कि हर कुछ करते हैं लेकिन आसन दर्जे पे नहीं करते। और वह अन तुम मोरिदून, और तुम हो ही फिर जाने वाले। अब मैंने जो लफ्ज़ी वज़ाहत में आपको थोड़ा सा तذکرہ किया था, वल्ला और अन तुम मोरिदून, आप इन तीनों चीजों को इकट्ठा लिख लें। तवल्लैतुम वो लोग हैं जो पूरे के पूरे दीन से मुंह फेरे हुए हैं, वो तो कहते हैं जरूरत ही कोई नहीं, दीन की बात ही ना करो, ये वेले लोगों का काम है, बेकार काम है, नमाजें रोजे हज कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल एक कह लीजिए डिविएटेड फिरका है। वो कहते हैं नमाजों की जरूरत नहीं, नमाज क्या? वो कहते हैं सिर्फ एक नमाज का निजाम कायम करो, कोई नमाजों की जरूरत नहीं, और हदीस किसको पता है हदीसें ठीक है कि गलत है? उनको तो फिर अल्लाह खुद पूछेगा, वो अपना नाम जो भी रखे लेकिन अल्लाह उनको मुसलमान नहीं कहता, ठीक है, वो तो निकल गए इससे। कलीला मिनकुम में कौन है? कुछ लोग ऐसे जो हकीकत में सब काम करते हैं, जो बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, आप लिख लें कलीला मिनकुम के आगे बैलेंस पर्सनैलिटी, हकुकुल्ला और हकुकुल इबाद दोनों में बैलेंस रखने वाले, तवाजुन रखने वाले। और अंतुम मोरेदून में क्या? उसी लफ्जी वजाहत को सामने लाइए, कुछ चीजों से मुंह फेरा हुआ। अब जैसे मैं इधर मुंह करती हूँ तो मेरा मुंह तो उधर है लेकिन मेरा हाथ मेरे जिस्म सामने की तरफ है ना, तो ये उन चीजों पे मुंह फेर लेते हैं जो उनको मुश्किल लगती हैं, और जो अच्छी लगती हैं उसकी तरफ मुंह फेर। ऐसे ही गिरोह का तस्करा आगे आ रहा है। अभी तक इस आयत से हमें क्या पता चला? कि उम्मत मुस्लिमा को वही सब कुछ करना है जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है, पिछले गिरोहों से सबक हासिल करना है, हकुकुल्ला और हकुकुल इबाद दोनों को अदा करने की कोशिश करनी है, और बनी इसराइल के जवाल की वजह भी समझ आ गई कि उन्होंने अल्लाह के हुक्मों को पीछे डाला, अल्लाह ने उनको पीछे डाल दिया। अब आयत 84 से 86 तक, इस एक आयत के आगे से कुछ यहूद के रवैये हैं, थोड़ा सा अपने लफ्जों में बताती हूँ फिर उसके बाद आयत के साथ चलेंगे, बहुत आसान लगेगी, और कह लीजिए कि इस वक्त हम पहले पारे के क्लाइमेक्स में हैं। ये आयत एक पीक है, पारे का भी तकरीबन सेंटर ही चल रहा है, और अहकाम का भी देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने कैसे बताया। अभी जो पीछे हमने आयत पढ़ी है ना, आयत 83, इसमें इनफरादी काम थे जो मुझे करने हैं, हर बंदे को करने हैं, डूस थे, अमर थे, हुक्म थे, ठीक है। अब आयत 84 में इज्तमाई अहकाम, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बीइंग अ नेशन क्या जरूरत है, और डोंट्स की बात है, फिर दोहरा हिस्से में उन बातों का हुक्म था जो करो, और तुम अकेले अकेले करो, क्योंकि हम सब के कयामत में दो तरह से हिसाब होने, ये भी लिख लें, मुहासबे की दो सूरतें हैं कयामत के दिन। एक इनफिरादी मुहासबा, मसलन जैसे आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, आप सब का वन ऑन वन टेस्ट होगा एक, तो जिसमें आप सब खड़े होंगे अल्लाह के सामने, और ला तजजी नफ्स ना नफ्सिन शैय्या, ठीक है। लेकिन एक इज्तमाई मुहासबा है, ये ऐसी है जैसे आपका पर ग्रुप एक टेस्ट हो जाए, या पूरी क्लास को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, ए ग्रुप बी ग्रुप, तो उसके नाते से आपका कोई कंपटीशन करवा लिया जाए। बिल्कुल इसी तरह क्यामत के दिन हमारा एक इनफिरादी हिसाब होना है और एक इज्तमाई हिसाब होना है। और हम मुसलमानों को खास तौर पे अब इस पे गौर व फिक्र करना है कि आज उम्मते मुस्लिमा में इनफिरादी इबादत करने वाले आपको काफी लोग मिलेंगे, नमाजें, रोजे, हज, जकात, सदके, खैरात, लेकिन बीइंग अ नेशन इज्तमाई तौर पे इस वक्त उम्मते मुस्लिमा का क्या हाल है, वो आपको मुझे इस आयत को पढ़ने के बाद दिखेगा। आइए आयत शुरू करके साथ थोड़ी सी बात करते हैं। वइस अखज़ना मीसाकाकुम, और जब हमने तुमसे मीसाक लिया, टेक्स्ट के एतबार से इधर कौन मुराद है? यहूद, और आम हालात से मुराद हम सब भी हैं। क्या है कामाते ला तस्फिकू नदी माकुम, इस पे वन लिख लीजिए कि तुम आपस में खून रेजी नहीं करोगे। जैसे आज मुसलमानों को कहा कि खून बहाना, कत्लो गारत गरी, अल्लाह का दीन हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाता, ठीक है, अपने हम मजहब लोगों के साथ ये मामला नहीं करोगे। दूसरा क्या डोंट था, वला तुखरिजू अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और अपने ही भाई बंदों को इनके घरों से जिला वतन नहीं करोगे, यानी अपने ही जैसे दूसरे मुसलमानों को उनके घरों से नहीं निकालोगे। अभी यहां सिर्फ दो की बात है, दो अगली आयत में आते हैं, फिर मैं बताऊंगी। अब क्या हुआ इन दो को सुन के, सुम्मा अकरर, तुमने इकरार कर लिया, जिसको आप कहेंगे प्लेज दे दिया कि वी विल डू दिस, कन्फेस कर लिया, वन तुम तशहदून, और तुम इस पे गवाह हो। अब ये माहिदा इनके साथ कहाँ हुआ था? सूरत माहिदा की आयत नंबर 32 का नंबर लिख लें, घर जाके आप इसका तर्जमा लिखेंगे, जिसकी आप जगह भी छोड़ देंगे कि कतब नाला बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सन बगैरी नफ्सन, के बनी इसराइल पर हमने ये हुक्म नाजिल कर दिया था कि जिस शख्स को किसी दूसरे के की को जान के बदले के सिवा, या जमीन में फसाद बर्पा करने के जुर्म में के सिवा कत्ल किया, तो गोया किसने सब लोगों को मार दिया, और जिसने कत्ल किसी को नाहक कत्ल होने से बचाया, गोया के सब लोगों की जिंदगी का सबब बना। ये आयत पढ़ेंगे सूरह मायदा में, लेकिन आप यहां समझे कि जैसे आज उम्मत मुस्लिमा में कत्ल के बदले में कत्ल की सजा है, तो यहूद के साथ यही मौजूद थी, और साथ ही साथ ये था कि लोगों को उनके घरों से नहीं निकालना। ये इनमें भी यही बात है। सूरत निसा आयत 93 का नंबर लिखिए, तर्जमा बाद में जाके लिखिएगा, वमन यक्तल मोमिनन वमन यक्तल मोमिनन मुतामिदन, कि जो किसी मोमिन को जानबूझ के कत्ल करेगा उसकी सजा जहन्नुम है, जिसमें हमेशा रहेगा, और इस पर अल्लाह का गजब और उसकी लानत है। ठीक, एक मिनट मैं बोलती हूँ। अल्लाह का गजब और उसकी लानत है, और अल्लाह ताला ने उस पर बहुत बड़ा अजाब दिया है। सूरत निसा की आयत नंबर 93 है। तो इन दोनों आयतों को जमा कर ले तो पता चलता है कि यहूद को भी यही हुक्म था और आज के मुसलमानों को भी यही है। एक हदीस का नंबर भी नोट कीजिए, तिर्मिजी की रिवायत है, अबू हुरैरा इसके रावी हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमान भाई भाई हैं, ना तो इनको एक दूसरे की खयानत करनी है, ना इनसे झूठ बोले, ना इनको रुस्वा करे। हर मुसलमान पर मुसलमान का खून, इसका माल और उसकी इज्जत हराम है। फिर आपने अपने सीने की तरफ इशारा किया और 3 बार फरमाया, अत तकवा हा हुना, अत तकवा हा हुना, यानी तकवा तो दिल में होता है, मुराद है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा वो कभी दूसरे भाई के साथ जुल्म नहीं करेगा। और आपने फरमाया, इंसान के लिए इतनी ही बुराई काफी है कि अपने मुसलमान भाई को हकीर ख्याल करे। तो अब यहां से आपको मुसलमानों का मुसलमानों के साथ ताल्लुक दिखता है और मुसलमान गलत है। जो निकालने की बात है घरों से, इससे मुराद है कि जुल्म और ज्यादती नहीं करनी, पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं तकरीबन पांचवें रुकू से कि यहूद अपने असल दीन से भटक चुके थे, अल्लाह की दी हुई किताब तौरात में तब्दीलियां कर चुके थे, अल्लाह के अहकामात को सुनते थे, वादा करते थे कि अमल करेंगे, लेकिन जब मौका आता तो वादे से फिर जाते और अपने मन घड़त किस्म के झूठे अकीदों में मुबतला थे। गुमान क्या था, गुना कितने भी कर लें, कितनी नाफरमानियां करें, हमें सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमें दोजख से निकलवा लेंगे। अल्लाह ताला ने इनके इन गलत अकायद को खत्म करते हुए पिछली आयतों में कह दिया, बला मन असलमा, जन्नत में जाने के लिए इस्लाम लाना और अमल करना लाजमी होगा, नहीं करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। अब यहूद के साथ ये बातें जब पूरी हो गईं कि तुमने अपने ही दूसरों को कत्ल नहीं करना और उनको घरों से नहीं निकालना, इन दो बातों के जवाब में कौम का हाल क्या हुआ? बिल्कुल ऑपोजिट, मानते ही नहीं थे, भटकी हुई भेड़ों की तरह हो गए, जैसे आज उम्मते मुस्लिमा का भी यही हाल है। एक शेर है ना कि हकीकत खुराफात में, आज रिवायात के नाम पे हम कितने गलत काम करते हैं, शादी ब्याह मरना जीना ये सब कुछ है। अब आइए अगली आयत पे, अभी बात पूरी नहीं हुई, सिर्फ आयत के अंदर से बात ले रही हूं ताकि इसका खुलासा एंड पे करूं। सुम्मा अंतुम, फिर हो तुम वो लोग, हाउलाई जो तब्तुलून अनफुसकुम, नंबर एक कत्ल करते हो अपने लोगों को। हुक्म क्या था? ला तक्तुलून, इन्होंने क्या किया? तक्तुलून। दूसरा हुक्म क्या था? उनको उनके घरों से ना निकालो, इन्होंने क्या किया? वतुखरिजू न फरीकम मिनकुम मिन दियारिहिम, तुम उनको उनके घरों से निकाल देते हो, यानी कहा था ना निकालो, तुम निकाल देते हो। तीसरा गुनाह अब यहां नहीं लिखा, वो आप अपने लफ्जों में लिखिए। यहूद को एक तीसरा हुक्म भी था अपनी किताबों में, और वो क्या कि जब कोई गैर मुस्लिम तुम पर ज्यादती करे, मुसलमानों पे यानी यहूद पे, तो तुम दुश्मन की मदद नहीं करोगे, मुसलमान भाई की करोगे। यही होना चाहिए ना कि मुसलमान के ऊपर जब कोई गैर मुस्लिम हमला करे तो बाकी सारे मुसलमानों का क्या फर्ज है? मुसलमान का साथ दें कि उस काफिर का दें? लेकिन इस कौम का हाल क्या होगा? अब आयत पे आइए, तज़ाहरुना अलैहिम बिल, तुम अपने ही मुसलमानों के खिलाफ दूसरों की मदद करते हो गुनाह और ज्यादती के साथ। बात वाज़े, यानी ये ऐसे ही जैसे आज के दौर में जब किसी मुसलमान मुल्क पे कोई गैर मुस्लिम हमला करता है तो दूसरे मुसलमानों का क्या फर्ज है कि उस मुसलमान मुल्क को सपोर्ट करें? ये किसको सपोर्ट करते हैं? उन दुश्मनों को करते हैं। ये तीसरा जुर्म था। एक चौथा भी जुर्म था, एक चौथा हुक्म था यहूद को, उसका तذکرہ अगले हिस्से में आ रहा है, और वो क्या था कि अगर मुसलमान दुश्मनों के हाथों में कैदी बन जाएं किसी जंग की सूरत में, तो तुम जाके उनके पैसे देकर फिदिये में उनको छुड़ा लोगे। बात वाज़े, अभी दोहराऊंगी सारी, इसलिए फिक्र ना करें, कि फिदिये में पैसे देकर अपने मुसलमानों को आजाद कराओगे। इस अमल पे यहूद ने बड़ा अमल किया। कैसे? आयत पे आ जाइए वापस, वहीं यातू को मुसारा, और अगर तुम्हारे पास कैदी बनकर आए, असीर की जमा उसारा कैदी, तुम उनका फिदिया देते हो, यानी ये अच्छा काम करते हैं। यहां पे रुक के जरा सा आपकी मदद कर दूं, आपकी फिक्र कम हो जाए। यहूद को चार हुक्म थे किताब में। नंबर एक, कत्ल नहीं करोगे अपने बहन भाइयों को। नंबर दो, उनको उनके घरों से नहीं निकालोगे, यानी खून खराबा नहीं करोगे। तीसरा हुक्म कि तुम दुश्मनों की मदद नहीं करोगे उनके खिलाफ। और चौथा हुक्म ये था कि अगर किसी जगह दुनिया में मुसलमान कैदी बन जाएं किसी दुश्मन के हाथों में, तो तुम पैसे देकर उनकी मदद करोगे। कितने हुक्म हुए? मेरी उंगलियों को देखे ताकि आपके दिमाग में नक्श बन जाए। चार हुक्म थे। इन्होंने पहले हुक्म पे अमल किया? नहीं किया। दूसरे पे? नहीं किया। तीसरे पे? नहीं किया। तीन उंगलियां गिर गईं। آخری کام کیا رہ گیا؟ پیسے دے کے آزاد ہونا. اس میں تھی ذرا نمائش, شو آف, اس پہ عمل کرتے تھے. تو گویا کہ انہوں نے آؤٹ آف فور تھری آرڈرز کو ریجیکٹ کر کے وہ نیکی کا کام جس میں ان کی پریسٹیج تھی, واہ واہ تھی, سبحان اللہ کتنے اچھے ہیں, پیسے لگا کے مدد کرتے ہیں, ایڈ دیتے ہیں, سوشل ورک کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کرتے ہیں, اس کو کیا. اللہ سبحان تعالیٰ کہتے ہیں وہ محرم علیکم اخراجہم. اچھا جی, یہ ایک کام تو کر رہے ہو, تو باقی جو کام تھے جو تمہیں ان کو شہروں سے نکالنا تھا وہ تو تم پہ حرام تھا. خود ایسے حالات پیدا کر دیتے تھے کہ جس میں مسلمان خود دشمنوں کے آگے آ جاتے تھے ہاتھوں میں, لیکن جا کے بعد میں ان کے پیسے دے کے چھڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا کمنٹ کیا, افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد. آپ اور میں اس نقطے پہ بس اپنی توجہ رکھیں, کتاب کے بعض حصے پہ تو عمل کرتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. بات واضح ہوئی؟ وہ نیکی جو آسان لگتی ہے وہ کر لیتے ہو, اور وہ حکم جو مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. کسی کی تصویر آ رہی ہے اس میں ذہن میں؟ آج کا مسلم آسان احکامات لے لیتے ہو, مشکل چھوڑ دیتے ہو. وہ نیکیاں جو کسی کو پتا نہ چلے اس کو چھوڑ دیتے ہو, اور جہاں نمائش ہو, پمپ اینڈ شو ہو, گلیمرس نیکیاں, اس کو بڑے شوق سے کرتے ہو. کرتا ہے آج کا مسلمان؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے آؤ پھر اس کا جواب سن لو, مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ. آیت کے اوپر رکھیں پلیز, نظریں آیت پہ رکھا کریں جب یہ میں آیت ساتھ لیتی ہوں. یہی چیز آپ کا رب جوڑے گی ان ساری باتوں کا آیتوں سے, ورنہ آپ کو یہ ساری میری باتیں لگیں گی. ابھی میں نے جب اینڈ میں اپنے لفظوں میں بتانا ہے آپ کو سارا سمجھ آ جانا ہے, پھر آپ کہیں گے استاد بہت اچھا پڑھاتے ہیں. نہیں, قرآن کے اوپر رہیں گے تو قرآن سے ریلیٹ کر کے کل آپ بھی اچھا پڑھا سکیں گے. بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ کہ وہ الگ سے بات پوری سمجھتے ہیں, قرآن کی آیت پہ فٹ نہیں کر پاتے. تو یہ جو وقت ہے جس وقت آیت سامنے ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ اہم سمجھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ, کوئی تم میں سے جو یہ کرے. اب میرا آپ سے سوال ہے کیا کرے, کدھر اشارہ ہے؟ جی بتائیے. شاباش, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کہ وہ مسلمان جو کتاب کے ان کا انجام کیا ہے, اس کو آپ اب ہائی لائٹ کریں اپنی آیت پہ. الا مگر حسن فی الحیات الدنیا, ایسی قوم, ایسے مسلمان دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے. اور ویوم القیامت یردون الی شد العذاب, اور قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ شدید عذاب ہوگا. کیوں؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. تمہارے کام جو ہیں اللہ اس کی بنیاد پہ ہی تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. ایسے لوگوں کا حال کیا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, آیت 86 شروع ہو گئی, کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا. یعنی آخرت کا فائدہ لینا تھا, دنیا کا لیا, کیونکہ دنیا سستی ہے نا, تو سستی چیز لوگ جلدی خرید لیتے ہیں, مہنگی چیز نہیں خریدتے. لیکن آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ مہنگا روئے ایک بار, سستا روئے بار بار. آپ 100 روپے میں ایک جوتا بھی خرید سکتے ہیں, ہاں, اور آپ 20-20 روپے کے 5 جوتے بھی خرید سکتے ہیں. نقصان کیا ہوگا؟ 5 جوتے زیادہ بھی ہیں اور اکثر خوبصورت بھی ہوتے ہیں سستے جوتے, پہنیں گے دوسرے دن کے ہی چپل پہن کے گئے ٹوٹ گئی. آپ کہتے ہیں چھوڑو میں نے 5 کیا کرنا ہے, میں 100 روپے کی ایک اچھی جوتی لیتی ہوں, پاؤں میں بھی نرم, ڈیوریبل, زیادہ خوبصورت نہیں بھی ہوگی لیکن وہ باٹا کی یہ مثال ہے, اچھی ہے لے لو, خوبصورت نہیں ہے لیکن میرا پاؤں نرم ہے. دنیا دنوب سے ہے نا قریب, سستی ہے. بہت سارے لوگ دنیا زیادہ لے لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں قیمتی آخرت چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ مہنگی لگتی ہے. سستی چیزیں زیادہ خرید لیتے ہیں دنیا کے نام پہ, دین کی چیز مہنگی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أولئك الذين اشتروا الضلالة سوري أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، دنیا کے بدلے میں آخرت خرید لی. وہ عبادت کی چار قسمیں یاد کر لیں یہاں بھی، کہ جس پیسے سے آخرت خریدنی تھی اس سے دنیا خرید لی، جس جسم کی طاقت سے آخرت خریدنی تھی دنیا خرید لی. نتیجہ کیا ہوا؟ کیسے لوگ سستے بک گئے. فلا يخفف عنهم العذاب، ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. اس کے بھی دو درجے ہیں، ایک ہے ٹیمپریچر ڈیکریز 350 سے عہد کو 100 پہ ڈال دیا، چلو کچھ ان کا ہیٹ کم ہو جائے، ایک تخفیف تو یہ ہوگی، ریڈیوس کر دینا ٹیمپریچر کو تاکہ چلو کچھ تو سکھ کا سانس لے. اور ایک ہے ڈیوریشن میں کمی، جہنم میں جلنا تھا چلو اس کی جگہ ان کو 10 سال جلا دو، دونوں ہی نہیں ہوگا. ولاہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. کوئی نبی ولی پیغمبر کو غوث کتب آئے گا نہیں کہ جو ان کو جہنم سے نکال دے. تو یہ ہے بگڑے ہوئے مسلمانوں کا نصیب، کہ دین کے نام پہ جب بگڑے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. آپ کو لگ رہا ہے یہ یہود کی کہانی ہے؟ مجھے تو یہ آج کے مسلمانوں کی کہانی لگتی ہے. آپ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دین دیتا ہے نا، تو دین ایک مکمل شکل میں دیتا ہے. جیسے آپ کسی کو گفٹ دیں گے نا، تو آپ مکمل ڈنر سیٹ دیں گے، یہ نہیں کریں گے کہ اس میں چار پلیٹیں ٹوٹی ہوں، دو مگ جو ہے ان کے ہینڈلز ٹوٹے ہوں. ہم لیتے ہیں ایسا گفٹ. سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو کوئی دین دیتا ہے نا، کل کا یہود ہے یا آج کا مسلمان، دونوں برابر ہیں، بالکل کسی کو کسی پہ کوئی گلے شکوے کی ضرورت نہیں ہے، تو مکمل شریعت دیتا ہے. آج آپ اور میں بھی تو ایک جملہ بولتے ہیں نا اکثر، اور خاص طور پہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ایک جملہ ہم سب بولتے ہیں، اور وہ کیا؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ٹھیک ہے، اب بالکل اپنے ذہن کو ہلکا پھلکا کر کے سنیے، پھر یہود کی ہسٹری اینڈ پہ تھوڑی سی شیئر کر دوں گی. مکمل نظام دیا، کمپلیٹ پیکج ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہترین 24 جاگنے کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کام دے دیا. ٹھیک ہے، ہم جب اس پورے نظام کو لے کر اپنی زندگی میں نکلیں گے نا، تو دنیا کے بھی کامیاب، آخرت کے بھی کامیاب. اور اس کا ایکسپیرینس کب ہوا؟ اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حالات کیا ہو گئے تھے؟ کہ غربت ختم ہوگی مسلمانوں میں سے، لوگ زکوٰۃ کی تھیلیاں اٹھا اٹھا کے پھرتے تھے، سونے چاندی کے شرفیوں کی، لے لو کوئی لیتا نہیں تھا. یا آج جتنا برٹش سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے نا، انہوں نے خود ڈکلیئر کیا کہ ہم نے عمر بن خطاب سے لیا. یہ جو آپ پڑھتے ہیں فری سکولنگ اور فری ہاسپٹل اور ٹیکس لیتے ہیں، وہ آپ سے اور فائدہ دوسروں کو ملتا ہے، یہ حضرت عمر کا نظام تھا. آج ہم مسلمان بھولے پڑے، ہم حق والے کو حق نہیں دیتے، غیروں کو کیا دیں گے؟ اب اللہ نے دے دیا، اس پہ چلو زندگی کامیاب ہے، اور یہ ہوا، سکسیسفل ہے. آپ اور میں جب اس میں سے ادھوری چیزیں لیتے ہیں نا، اپنی مرضی کی چیزیں لے لیں، آدھی چھوڑ دیں، تو نقصان کیا ہے؟ کہ وہ اسلامی نہیں رہتا. دکھ کے ساتھ کہتی ہوں، جب بھی کہتی ہوں، کہ اس وقت جو ہم مسلمان جی رہے ہیں نا، 19 کے لیٹ سینچری کے جو پیدا تھے وہ بھی زندہ ہے، اور 20 شروع ہو گئے، ہم اس وقت اپنے اسلام کے تاریک دور سے گزر رہے ہیں. جیسے وہ ہوتا ہے نا ایسے سی سو گراف، آپ دیکھتے ہیں چیزوں کا، اوپر نہیں، وقت ڈارک زون سے گزر رہی ہے، لیکن یہ زون وہ ہے کہ جس میں اب تھوڑی روشنی شروع ہو گئی ہے، بلیک ختم ہو گیا. پیچھے بھی بات کی تھی، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت اگر ہے ابھی لیکن مسکنت سے نکل گئے، ہمارے یوتھ زندہ ہیں. بلیک نیچے تھا، اوپر ٹاپ تھا، عمر کا دور، ادھر سے یوں کشتی امت کی ڈوبنی شروع ہوئی، ڈوبتی 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 کالی ہوتے ہوئے. پچھلی جو گزرے ہیں نا 18 سنچریز اور 19 کا ہاف، یہ بالکل ڈارک رہا تھا. اب یہ ٹرینڈ جب سے 19 ختم ہو کے اب 20 میں نا، اب گرے زون میں ہم الحمدللہ، اور اوپر روشنی ہی روشنی ہے. جب تک کسی چیز کو پورا استعمال نہ کریں کام نہیں کرتی. میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ کسی نے جہاز بنایا، اب آپ کہتے ہیں جہاز چل ہی نہیں رہا، جہاز خراب ہے، کیا کرو؟ کھول کے دیکھتے ہیں، آپ اس کے پرزے بدل دیں، اپنی گاڑی کے کچھ پرزے جہاز میں لگا دیں، कुछ घर में वॉशिंग मशीन के पुर्जे पड़े हैं वो लाके जहाज में लगा दें, जो घर में बचे खुचे पुर्जे हैं वो मैकेनिक साहब लगाए और जहाज चलाएं, जहाज चलेगा। किसका कसूर है? जहाज बनाने वाले का कि पुर्जे बदलने वाले का? आज आप सोचिए कि इस्लाम एक जहाज का नाम है, कंप्लीट अल्लाह ने पुर्जा कील कांटा लगाया। आप कुरान पढ़ना शुरू हुए आप देखेंगे विरासत तक के हुक्म, वसीयत के हुक्म, तलाक के, इद्दत के, माँ बाप से ताल्लुक, इंसानों से, जानवरों से, कत्ल की सजा, जिना की सजा, शादी से पहले जिना की सजा, कोई मर गया तो क्या करना है, कोई जी गया तो कैसा करना है। ये 114 सूरतें, ये सारी कहानी है जो मेरी आपकी। अल्लाह ने कहा इसको चलाओ, हमने इसमें से पिक एंड चूज किया। ये जो अफतू में नोना भी बाद किताब है ना, असल में ये पिक एंड चूज होना है। रंग बिरंगा मुसलमान, टाई एंड डाई, कुछ रंग इस्लाम का, कुछ यहूद का, कुछ हनूद का। वो शेर भी है ना कि वजह में हो तुम क्या यहूद और कता में हो तुम हनूद, और तुम वो मुसलमान हो जिसको देख के शर्माई यहूद। वो यहूद ने भी नहीं किया जो आज का मुसलमान कर रहा है। पहले से सोचे समझे बैठे हुए कि इस हुक्म पे तो अमल मैंने बिल्कुल नहीं करना। एक नहीं, चार चार दफा कुरान पढ़ के पढ़ाने भी लग जाएंगे, हिदमत भी करेंगे, लेकिन कहेंगे इस हुक्म पे तो मैंने अमल नहीं करना, ये आई कैंट, मैं ये नहीं कर सकती, नहीं करना, नहीं करना। देखिए एक बात है ना कर सकना और एक है बिल्कुल ना करना, बहुत फर्क है। आप तौफीक मांगे अल्लाह आपको तौफीक देगा। हम सोचते हैं अधूरे इस्लाम के साथ अल्लाह को खुश करेंगे, हम तो लोगों को खुश नहीं कर सके। आज हम मुसलमानों का हाल क्या है आप देख सकते हैं कि दुनिया में कितने मुसलमान हैं। आपको पता है कि आज दुनिया में हर 5 लोगों में से एक शख्स मुसलमान है, एक मुसलमान है। बिलियंस में हम मौजूद हैं, लेकिन आज हमारी इज्जत क्यों नहीं? क्योंकि आज हमने इस किताब के हिस्से बखरे कर दिए, दुनिया को बेअमली का नाम दिया। जाती रुसवाई बर्दाश्त नहीं करते दीन पे आने की, नतीजा क्या होता है कि उम्मत की रुसवाई बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ खिजन की बात है ना, ये भी समझ लें, रुसवाई दो तरह की होती है। एक वो रुसवाई है जो हम दीन पे अमल करने के जिम्मन में भुगतते हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुसलमानों का यही हाल है। हम दीन पे जब अमल शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने घरों में जलील होने लगते हैं, रिश्तेदारों में शर्मिंदा। ये क्या सर पे पट्टी बांध ली है, ये क्या हो गया, ये क्या बेटों की शादी ऐसे करनी है, ये कोई तरीका है बड़ा शादी करने का? यानी एक रुसवाई है जो दीन पे पूरा अमल करने से होती है मुसलमानों की। अल्लाह ताला कहते हैं दीन उबदा गरीबन, दीन अजनबियत से, गुर्बत से शुरू हुआ, और एक वक्त आएगा कि जो दीन पे अमल करेगा लोगों को गरीब लगेगा, अजनबी, मासी। ये क्या स्कार्फ पहन लिया, ये क्या? अब ये रुसवाई कौन सी है जो मुसलमान की मुसलमानों के हाथों होती है? मानते हैं ना, कोई बात नहीं साले, इसका अंजाम बड़ा खूबसूरत है, आखिरत में भी इज्जत और दुनिया में भी। अल्लाह सूरत नूर में खुशखबरियां देता है कि आखिरी अंजाम तकवा वालों का और बेहतर होगा। एक रुसवाई है पूरे दीन पे अमल करने की, फनेटिक किस्म कहते हैं लोग उसको, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, फंडामेंटलिस्टिक कहते हैं, मान लीजिए, कबूल कर ले, थोड़े दिन आप दीन की वजह से बदनाम हो जाए, पसंदीदा, इसका बदला आखिरत में जन्नत है इंशाल्लाह पे अमल करके। अफतू में नू नबी बादिल किताब, उसका इंजाम क्या है कि दुनिया में तो रुस्वा हुए सो हुए, आखरत में अल्लाह ताला कहते हैं कि वलफला युखफ्फन हुमुल अजाब। ये रोने की बात। एक तो ये ना कि आज हम मुसलमान दुनिया में बदनाम है, कोई गोली चलती है मुसलमान का नाम, जहाज गिरता कहते हैं मुसलमान परिंदे ने गिराया होगा, ये फलां होगा, ये वो होगा। लेकिन गम की बात है कि इसमें जो मुसलमान मर कट रहे हैं इनके लिए आखिरत में फिर भी अजाब है। आमतौर पर अल्लाह ताला का कुलिया क्या है कि दुनिया में जो गम मुसीबतें आ जाती है ना, ये आखिरत के कफारे बन जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है कि वो कहते हैं कि दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी बदनाम। वजह क्या है? अफतू में नो नबी बादिल किताबी वतकफुरू नबी बादिल किताब। पिक एंड चूज, वट एवर यू वॉन्ट टू पिक पिक इट, और वट एवर यू डोंट वॉन्ट इट लीव इट। इस्लाम नहीं है, इस्लाम कहता है एक्सेप्ट इट और लीव इट। पूरी इताअत पे जन्नत का वादा है। पीछे से पढ़ते आ रहा है इब्लीस ने एक सजदे का इनकार किया, अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाला। आज हम इतने दीन का इनकार करते हैं। आप खाना पकाएं और उसमें से कुछ चीजें डाल लें कुछ ना डालें, वही टेस्ट आएगा खाने का जो सारी चीजें डालने का होता है। हम तो एक निहारी पकाने बैठ जाएं तो चार दफा बाजार भेजते हैं मियाँ साहब को, ये नहीं और वो नहीं और टेस्ट नहीं बनेगा एक चीज ना, पूरा वक्त टेबल पे कहते रहते, नहीं असल में आज वो चीज नहीं थी वो बनना था। तो आप तो अपनी निहारी के लिए बिरयानी पे कॉन्शियस है, अल्लाह को रोना गुस्सा नहीं आता होगा हम पे कि मेरे अधूरे दीन को कह के फिर बदनाम करते हो कि इस्लाम पे अमल नहीं हो सकता। एक तरफ नमाजें भी हैं और एक तरफ सूद भी है, कहते हैं नमाज अल्लाह के साथ मामला है, सूद हमारा बिजनेस है। ये तो पर्सनैलिटीज कभी अल्लाह ने के दौर में नहीं, अल्लाह के नबियों के दौर में नहीं हुई। रिश्वत की कमाई कुछ सदका दे देंगे, हराम कमाई करो कुछ जाके नुमाइशी चंदे दे देंगे, कहीं तस्वीरें खिंचेंगी गरीबों को जाके, औरतों को हम दे देंगे सिलाई मशीनें। तो हर बंदा सोचे इसके ऊपर, दूसरों का खून चूस के महंगाई की बात में जाके फ्लड वालों को जाके 1-1 लाख रुपए बांट दिया। आज इज्तमाही और इनफरादी तौर पे क्या कुछ हो रहा है। और याद रखिए कि कुरान एक आईना है, मुझे और आपको, मेरे और आपके धब्बे भी दिखाता है, मुसाम भी दिखाता है क्या बंदा है। जब ये अपने लिए देखेंगे ना तो अपनी इसलाह होगी, और दूसरों के लिए तो हुक्मरानों पर तनकीद करते फिरेंगे। आज हमारे हुक्मरान क्यों जुल्म करते हैं कभी आपने सोचा? गरीबों ने कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ, उनको पता ही नहीं कि चोरी का इतना बदला गुना है और दूसरों का माल ना खाना इतना बुरा है और कत्ल का इतना बुरा है और दीन का मामला ये बुरा है। नतीजा क्या हुआ कि वो बेचारों, आप कुछ करना चाहते हैं ना हुक्मरानों के लिए तो उनको कुरान दें, तफसीर के नुस्खे दें, सीडीज दें, कोई एक तो सुन लेगा, कोई पैगाम दे सकते हैं, कोई लिख के दे सकते हैं। वो क्या कि सियासत छोड़ो पहले कुरान पढ़ो। मैं कहती हूँ उस बंदे को सियासत के मैदान में आने का हक नहीं है जिसने कुरान को तर्जमे और तफसीर से नहीं पढ़ा हुआ। जिसने हिस्ट्री नहीं यहूद की पढ़ी वो अपनी हिस्ट्री क्या बनाएगा, वही बनाएगा जो आज बन रही है। और यहूद की कहानी अल्लाह हमें इसलिए नहीं सुना रहा कि अल्लाह ताला उनकी बुराइयां करता है, हमें सिखा रहा है कि कौम में कब पनपती हैं और कब झुड़ती हैं। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर इसी किस्म के हालात लाकर फिर कहते हैं कि इस्लाम काबिले अमल नहीं है। सोचना, हमने अपने इस्लाम को पूरा कीजिए, पूरा इस्लाम लाए, यहूदियत नसरानियत फला फला इन चीजों को निकाल दे, आप दीन पाएंगे। हमारा हाल क्या कि अल्लाह ने शरीयत बनाई हमने बदल दी। पिछले सबक से भी इसका रब्त है कि कैसे उनके उलमा ने अपने दीन को बदला, बदल दिया, खराब किया, नुकसान हो गया। याद रखिए कि ये कुरान टू डू लिस्ट है, हम इसको टू रीड कहते हैं, लिखेंगे जुमला। आजकल बड़ा रिवाज है ना थिंग्स टू डू, किताब जो है ना ये कुरान जो है ये टू डू है, करो करके दिखाओ। हम इसको क्या कहते हैं, ये बस पढ़ो टू रीड, और खास तौर पे तब पढ़ो जब कोई मर जाता। अल्लाह ताला हमारी इसलाह कर दे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, कुछ बात अपनी समझ आई? आज मुसलमान क्यों बदनाम है, क्यों उनके नाम बनते हैं, वजह समझ आई? आज गोलियां मुसलमानों के सीनों पे क्यों चलती हैं? कभी आप दुनिया के पूरे नक्शे पे नजर डाल के देखें, जहां जहां जंगें चल रही हैं, कभी आप दो काफिरों के को भी देखेंगे एक दूसरे पे लड़ते हुए? मैं हिस्सुम फिल हयात दुनिया। आज हम बाहर बाइज्जत बने फिरते हैं, बड़े इज्जत है हमारी चौधरी, घर आते हैं जूते पड़ते हैं, झूठी शान है हमारी। बाहर इज्जत बड़ी है हमारी, अंदर आए तो हो सकता है औलाद के ही करतूतों पे अंदर फूट फूट के रोते हो। ये करतूत हैं आज मुसलमानों के अकेले। जब तक याद रखिए किसी की अपनी नजरों में इज्जत खुद नहीं होगी ना, वो दूसरों की नजरों में इज्जत नहीं होगी। कोई बात शेयर करें जी, शमाइला आप शेयर करें, आज सुनते हुए क्या महसूस किया आपने ऊंची आवाज से? कुरान की जरूरत है हमारी जिंदगी में जी। आप पीछे से, आप पीछे से प्लीज जी।
कभी मैं डॉक्टर इसरार को सुना करती थी, फेस टू फेस मैंने कभी नहीं सुना। ऑडियंस बहुत खामोश बैठे हुए होते थे और लगता था ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आपकी ग्राफी क्लास में वही फीलिंग आती है, और अल्लाह ताला मुझको इस क्लास में हमेशा हमेशा रखे पूरा करने की मुझको
आमीन
हिम्मत भी दे और मेरे हालात भी मेरे साथ में।
आमीन। आप देखिए ये जो सकीनत आप लोगों को क्लास में महसूस होती है ना, इसकी वजह सच है। जो बंदा दर्दे दिल लेकर पढ़ाएगा ना कुरान, वो ऐसे ही पढ़ाएगा, और उसकी आवाज एक ही होगी, वो डॉक्टर इसरार اسرار ہوں یا کوئی اور ہو. آج میں اور آپ اپنا سارا مال بھی لگا دیں نا اس راستے میں کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا میسج پہنچ جائے. نان مسلم تک تو چھوڑیں, اپنوں میں بھی پہنچا لیں گے نا تو بڑی بات ہے. آپ سب جہاں رہتے ہیں, میں رہتی ہوں یہاں, تو اردو سمجھنے والے کافر بہت ہیں, آپ جانتے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. کئی سالوں سے آپ وہاں رہتے, آپ کی میڈز ہیں, آپ کے بچوں کے خدمت گار ہوں گے, کئی بیبی سٹنگ ہوگی, تڑپ کے درد کے ساتھ اسلام پیش کریں. لیکن کون سا اسلام؟ ادھورا پورا اسلام. آدھے نوٹ سے اگر جنت نہیں ملتی تو پھر آپ بتائیں کہ آدھے اسلام سے تو دنیا میں بھی عزت نہیں ملتی. آج ہم رسوا اسی لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں. انشاءاللہ اگر آج کوشش کر لیں گے تو کہانی بہت ہوگی. آج چونکہ اس وقت پورا ہو گیا, میں نے سوچا تھا کہ میں نے آپ کو یہود کی ہسٹری میں شروع میں نہیں ڈالنا, ورنہ آپ یہ سوچ لیں گے کہ یہ خرابی ہمارے پاس ہے. کل کا جو ہمارا انشاءاللہ جو ہم سیکنڈ سیشن کرتے ہیں نا سبق کا, اس میں اب میں آپ کو وہ کہانی سناؤں گی جس پہ یہ آیتیں اتری ہیں. پھر تو آپ کو ایک آئینہ لگے گا کہ کل کے مدینہ کے یہود اور دنیا کا جو حالات ہے وہ آج 19 اور 20 سینچریز کے یہود اور مسلمانوں کے. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہماری حالت گزر جائے. لکھیے اپنے ایکسپریشنز, آن لائن والوں کے ٹیکسٹ کچھ پڑھتی ہوں اتنی دیر میں, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بریک, اور بریک کے بعد واپس جلدی سے پہنچے. دیکھیے بریک کے بعد کے جو ایکسٹرا منٹس ہیں جو آپ کی وجہ سے ہوں گے تو اس کا پوری کلاس. آپ نے لکھیے ایکسپریشنز, یہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں پورے کا پورا اترنا ہے انشاءاللہ, والدین کو ان کے حق سے زیادہ دینا ہے, اور ہم تو ان کا حق بھی نہیں دے پاتے. یہ لکھتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے, ریلیٹیوز کے لیے اور نیبرز کے لیے بھی اچھا بننا ہے. ابھی ہمارے سفر قرآن کے ساتھ شروع, ابھی ہمارا سفر قرآن کے ساتھ شروع ہوا ہے. جیسے احکامات آتے جاتے ہیں اس کو سننے کے بعد انسان کا دل کھلتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ جس دن آپ یہ 30 پارے پڑھ چکے ہوں گے پھر آپ کے دل کی کیا حالت ہوگی, پھر آپ کو وہ درد پتہ چلے گا. لوگ گھر کیسے چھوٹتے ہیں, جگہ کیسے بندہ چھوڑتا ہے. یہ درد دل میں آ جائے اور اللہ اسی درد میں دنیا سے لے جائے, آپ کسی صدارت اور وزارت کی کرسی میں سیاست کے نام پہ نہ بھی کھڑے ہوں, لیکن آپ عوام کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ مذہبی رہنما وہ کام کر سکتے ہیں جو سیاسی لیڈر نہیں کر سکتے. آپ نے سنا ہوگا محمد بن قاسم کا نام, جنہوں نے سندھ فتح کیا تھا. جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں, سڑکوں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے تقریریں کر کر کے لوگوں میں جذبہ جہاد پیدا کیا تھا. کیونکہ انہوں نے اس وقت کے خلیفہ کو لکھا کہ مجھے فوج چاہیے جن کے ساتھ جا کر میں راجہ داہر اور اس کے ظلم سے لوگوں کو نکالنا چاہتا ہوں. تو خلیفہ نے کہا ہمارے پاس اس وقت فوج نہیں ہے, وہ کسی اور ہے. تو بیٹھنی کے تقریر کر کے, واز کر کے انہوں نے لوگوں کے جذبہ جہاد کو ابھارا, اور ان کے ساتھ ہینڈ فل لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے جا کے حملہ کیا. اللہ نے سندھ پتہ کیا. بڑی بڑی فوجیں وہ کام نہیں کر پاتی جو چند درد والے لوگ ایک صحیح گائیڈ لائن ملنے پہ جا کے کام کر پاتے ہیں. تو دعا کیجئے وہ لیڈر مل جائے, اور الحمدللہ اس کے اثرات دنیا میں دکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے. آن لائن والے مائک ہولڈ کر لیں, آپ لوگ بھی آپ انجوائے کیجئے بریک کو. کمنٹس اپنے سارے چھوڑ دیں ادھر, انشاءاللہ کل اس پہ مزید تھوڑی سی بات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.